ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदान्त स्वामीनिते नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभाषादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिवेस्तवे वेदा सांगपद्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यत्स्यादं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस अंतिम सत्र में। यह जो 16 संस्कार के विषय में अभी तक हमने जितने भी संस्कार थे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, उन सभी संस्कारों के विषय में हमने अभी तक सुन लिया, और उसके बीच में जिनको हम अपने जीवन में उन सभी बातों को अगर अपने जीवन में उतार सकेंगे तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। तो इसलिए जो भी यथाशक्ति यथा योग्य देश काल पात्र स्थान के हिसाब से ये संस्कारों को करते रहिए कराते रहिए, जिससे हमारा जो समाज है हमारा जो सनातन धर्म है उसकी वृद्धि करने के लिए हमें इन संस्कारों की आवश्यकता है या इन संस्कारों को कराने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये संस्कार तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक व्यक्ति को यदि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत यदि किया जाए तो उसकी गति बहुत उत्तम हो जाती है। यानी वो अपने जीवन काल में धर्म का पालन तो करके वृद्धि करेगा ही, लेकिन वैसे भी यदि वो उसमें बुद्धि थोड़ी कम भी है यदि धर्म के प्रति, तो भी उसकी प्रगति बहुत जल्दी जल्दी ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यही संस्कार का कार्य है। ये लाइक बूस्टर का काम करते हैं। जैसे आप बाइक चलाते होंगे, जो रेसर बाइक्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा उसके वहां पर बूस्टर लगा हुआ होता है। तो जो बूस्टर लगा होता है उसका काम क्या होता है, जो गाड़ी की स्पीड होती है उससे वो कई गुना ज्यादा स्पीड में बाइक को उठा के लेकर के चले। एक कार में भी लगाया जाता है, उसको बूस्टर कहते हैं। तो उसी प्रकार वैसे तो हम हरि नाम जप करके भगवत धाम जाएंगे, हरि नाम जप करके हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, हरि नाम से ही जीवन शुद्ध होता है, लेकिन जिसमें हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, जिसमें हमें बहुत अननेसेसरी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन में, जिसका कोई कारण नहीं है, तो भी हम अपने जीवन में उन कष्टों के लिए उन कष्टों को सहन करते रहते हैं और उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वो सारे कष्ट दूर हो जाएं और जल्दी से जल्दी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें, उसके लिए यह संस्कार कराना अति आवश्यक होता है। तो आइए, संस्कार के विषय में तो अभी हमने सुन लिया, तो आज ये महत्वपूर्ण पाठ भी है। अगर हमने संस्कार बता दिया, लेकिन अगर किसी को संस्कार कौन से दिन करनी है, कौन सा विधि है, संस्कार किस पे आधारित है, क्योंकि कोई भी संस्कार कोई भी विधि कुछ मुहूर्त को लेकर के किया जाता है। बिना मुहूर्त के कोई ना तो विधि की जा सकती है, बिना मुहूर्त के ना तो कोई कार्य संभव है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ है, आज अच्छा योग है, आज अच्छा नक्षत्र है, इत्यादि विषयों पे हम बातें करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमें उनकी जानकारी ही नहीं, और इस आधार पे हमें कोई कुछ भी अगर हमें बता देता है तो हमें लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि हमें तो कुछ जानकारी है ही नहीं उसके विषय में। तो आज हम उन जानकारियों को भी बहुत अच्छे से इकट्ठा करेंगे, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यदि हो सके तो आप अपने पास पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि काफी कुछ आपको लिखना भी पड़ेगा। जो मैं इमेज आपके सामने शेयर करूंगा उसके साथ में आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको ज्यादा समय याद रहेगा। यदि आप सुन भी लेंगे, खैर ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग सब हो रहा है, तो भी आपको लाभ मिलेगा, तो ये भी ध्यान पूर्वक आप कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ प्रभु जी,
जब तक सभी भक्त पेन पेपर लेके आ रहे हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सभी को। जिस भक्त के भी प्रश्न है वो टेक्स्ट करके भेज सकते हैं, अभी से भेजना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि लास्ट में टाइम वेस्ट ना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी से आप लोग टेक्स्ट करके चैट में अपने अपने क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर सकते हैं, जो पहले के संस्कार हैं। और आज भी प्रभु जी जो पहचान के बारे में बता रहे हैं उसमें बीच में डाउट है, तो वाले प्रश्न भी हम साथ साथ भेजना स्टार्ट कर सकते हैं।
धन्यवाद। तो यह जो संस्कार है, यह संस्कार पंचांग पर ही आधारित है। यदि पंचांग का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें मालूम ही नहीं किस दिन खाना चाहिए, किस दिन व्रत करना चाहिए, किस दिन कौन सी विधि का पालन करना चाहिए, किस दिन क्या संस्कार करना चाहिए, कौन से संस्कार नहीं करने चाहिए, इत्यादि विषयों पर भी हम प्रश्न उत्तर लेकर के उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं। जितना प्रारंभिक बेसिक नॉलेज है, जितना प्रारंभिक ज्ञान है हमारा आज का पंचांग के विषय में, मैं उतना ही प्रयास करूंगा कि आपको उतना समझ जाए, क्योंकि ये विषय भी बहुत बड़ा है, इसके पीछे भी काफी क्लियर करना पड़ता है एक एक पॉइंट को। लेकिन अगर आपको अगर कुछ नहीं मालूम है तो आज अगर आप बेसिक जान जाते हैं तो भविष्य काल में आप उसके विषय में और आगे जान सकते हैं, जान पाएंगे भविष्य में भी। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें कुछ मालूम ही नहीं है तो उसके विषय में ज्यादा डिटेल जान करके हमें वो पूरा विषय हमारे दिमाग से बाहर चला जाता है। इसलिए पहले प्रारंभिक विषय को समझते हैं, और फिर बाद में यदि भविष्य में फिर से कभी ऐसा समय आएगा हमारा तो हम उस पर और विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो लंबा नहीं चलेगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम चलाएंगे। जितनी आवश्यकता है मैं उतना आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ जाए, और उसके बाद में हम सारे प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं पंचांग से। तो इसे कहते हैं पंचांग। पंचांग का अर्थ होता है पांच अंग को मिलाकर पंचांग कहते हैं। ठीक है, पंचांग का क्या अर्थ है, पांच अंग को मिलाना। ये अंग है, अंग क्या है, जैसे हमारे शरीर में पांच भूत हैं, या पांच अंग हैं हमारे, है ना, या पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, वैसे ही ये पंचांग भी है। तो पंचांग के भी अपने एक अंग है। अगर आपको पंचांग जानना है, ये पंचांग क्या है, लाइक कैलेंडर जैसे आजकल हम देखते हैं, तो हमें सिर्फ दो ही चीज पता होती है, एक तो घंटे के हिसाब से टाइमिंग मालूम पड़ता है हमें, और दूसरा डेट मालूम पड़ता है, बहुत जानते हैं और डेज जानते हैं, उससे ज्यादा हमें और कुछ मालूम ही नहीं होता। हमें जो मंथ है वो भी हम अंग्रेजी मंथ को ही जानते हैं, हमें कोई अपने हिंदी मंथ के विषय में भी याद नहीं है। तो इसलिए ये सारे आज हम पंचांग के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, यही हमें जानना है कि जब ये पंचांग को हम सुन लेंगे समझ लेंगे तो कम से कम हम अपने मोबाइल से या कहीं पर भी पढ़ के हम तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ आज कौन सा वार है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और उसको अपने जीवन में किस दिन में कौन सा अच्छा कार्य करना है, ये सारे विषयों के विषय में हम सोच पाते हैं या चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो पंचांग में पांच अंग जो हैं, उसमें पहला है तिथि, दूसरा है वार, तीसरा है नक्षत्र, चौथा है करण और पांचवा है योग। तो जैसे हम लोग क्या शब्द सुनते हैं, अतिथि, अतिथि का मतलब होता है जो बिना बुलाए आ जाए, उसको कहते हैं अतिथि। तो तिथि का मतलब क्या होता है, यानी एक एक तिथियां होती हैं। तिथि मतलब लाइक हमारे हिसाब से आजकल का डेट होता है, एक दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख जो होता है उसको हम लोग दिनांक कहते हैं या दिन कहते हैं या डेट कहते हैं। तो ये जो दिनांक है उसको तिथि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। ठीक है, ये सब काल गणना जो है ये बहुत पुरानी काल गणना है, ये आज की नहीं। ये काल गणना जो पंचांग में जो तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इन पांचों वस्तु को मिला करके ही हमारा पूरा प्लैनेट सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, या उसी के आधार पे ही ये हमारे जितने फेस्टिवल आते हैं, जितने भी त्योहार या जितने भी प्रकार के कोई अच्छे तिथि आती है, पुण्य तिथि इत्यादि जो आती है, उसे हम लोग इसी पंचांग के आधार पे कहते हैं, बताते हैं। अगर आपको पंचांग मालूम रहेगा अपने जीवन में, तो आप कभी भी, आपको पता होगा कि ये दिन देख करके आप खुद स्वयं पता कर पाएंगे कि हाँ ये शुभ दिन है या अशुभ दिन है, ऐसा भी पता चल जाएगा आपको। क्योंकि होता यह है कि आजकल के जो समाज में जो हम ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, तो ब्राह्मण क्या करते हैं, जो उनको सुटेबल डेट होता है वही डेट दे देते हैं, भले मुहूर्त हो या ना हो, उसके ऊपर कुछ उनका प्रश्न, कुछ आधार नहीं होता। उनके पास वैसे चार तारीख बुक हुई है, यानी एक, तीन, पांच, ऐसा डेट बुक हुआ है उनका, तो बीच में दो और चार खाली है, तो वो बोलते हैं हाँ एक काम करो, दो तारीख को अच्छा मुहूर्त है, ये आपके लिए पूजा करवा देते हैं इस पे, या चार तारीख का डेट है वो आप ले लीजिए। लेकिन वास्तव में वो तीन को, सॉरी दो को और चार को जो डेट है, वो डेट में मुहूर्त ही अच्छा नहीं है, उस दिन का नक्षत्र अच्छा नहीं है, वो शुभ नक्षत्र, शुभ करण, योग इत्यादि सब ठीक ठाक नहीं है। और ऐसे दिन में जब हम कोई पूजा कराते हैं या ऐसे दिनों में हम कोई संस्कार करते हैं, तो उसका लाभ हमें अच्छे से नहीं मिलता है। या कभी कभी हम कहते हैं, अभी जैसे कल काफी भक्तों ने प्रश्न किया था कि हमने श्राद्ध कराया लेकिन वो श्राद्ध पूरा नहीं हुआ, तो वैसे तो मृत्यु के तुरंत बाद से वो सारी विधि उसी दिन से लागू हो जाती है, लेकिन अगर किसी को मालूम होगा कि भाई ये दिन का विधि कौन से दिन करना है, कभी कभी तिथियों के विषय में समझ में नहीं आता है लोगों को, कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ वो चार तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, तो चार तारीख कौन से ईयर में और वो कौन सा डेट आया था, तो उसके हिसाब से कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा नक्षत्र था, वो देखा जाता है। तो पहले तिथि को पकड़ करके फिर वो अगले साल के तिथि के हिसाब से उसका पूजन किया जाता है ना। तो पहले आज आपको पहले इतिहास बताते हैं, ये जो हम लोग आजकल का कैलेंडर यूज करें, पहले इस विषय में चर्चा करते हैं, फिर आगे हम पंचांग के विषय में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस समय जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जो एक दो तीन चार तारीख देखते हैं, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, इसकी शुरुआत 1582 में हुई थी। ठीक है, और इसके जो एक पोप थे, ग्रेगोरियन से, ये ग्रेगोरी जो थे ये पोप थे, तेरवे पोप थे, उन्होंने जूलियन कैलेंडर, इसके भी पहले चलता था जूलियन कैलेंडर, उसको उसमें से निकाल करके चेंज किया गया। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, इसको इस कैलेंडर के ऊपर में इन्होंने अपना एक नया सिद्धांत बना करके इस कैलेंडर को बनाया, ठीक है। तो ये जो कैलेंडर इन लोगों ने बनाया है, इसके हिसाब से चार वर्ष के बाद में, मतलब जो इनका जो पूरा वर्ष होता है वो 365 दिन होते हैं और हर साल 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है वो, तो 365 प्लस 6 घंटा एक्स्ट्रा, तो 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो जैसे ही 4 साल पूरा हो जाता है तो फिर वो 5वें साल में एक दिन को बढ़ा देते हैं, जिसको लोग लिप ईयर बोलते हैं, ठीक है। ये लिप ईयर को ही ये लोग फरवरी महीने में, कभी 28 आता है और कभी 29 जो आता है, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए जो हम लोग अभी अपना जो जनरल कैलेंडर देखते हैं नॉर्मली, तो उसमें हम क्या देखते हैं, हर 4 साल के बाद में जो 5वां साल आता है उसमें हम देखते हैं कि एक दिन बढ़ गया है। तो वो जो एक दिन यानी 29 तारीख जो आता है, जैसे इस बार 2020 में ये 29 तारीख आया है, आप फरवरी के कैलेंडर में देखेंगे तो 29 तारीख आया है। तो इसके 4 साल पहले यानी 2016 में भी आया था, यानी हमारे हिसाब से, फिर 2016 के बाद में फिर ये आया था 2012 में, फिर 2008 में, ऐसा पीछे पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस वर्ष के अंदर में टोटल हर साल में एक बार एक 29 तारीख आता है। ऐसे हर बार 29 तारीख नहीं आता, लेकिन एक बार 29 तारीख आता है। तो इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये जो एक राजा भी था, ये ग्रिगोरियन एक राजा भी था और ये पोप भी था, दोनों उसका समावेश, अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताया जाता है। तो इसका मैं एक इतिहास बताता हूं। हुआ ऐसा कि जब ये जूलियन कैलेंडर चलता था तो जूलियन कैलेंडर में बहुत सारी त्रुटियां होती थी, वो हर साल वो लोग 366 दिन मनाते थे, 366 डेज मनाते थे, और उसमें भी उनके कुछ 14 घंटे 11 मिनट 48 सेकंड ऐसे कुछ एक्स्ट्रा होते थे, फिर वो लोग उसको एडजस्ट करने के लिए और उसके लिए कुछ और एक दिन आगे पीछे करते थे, कम करते थे, ज्यादा करते थे, ऐसा करते थे। तो इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि हम लोग जो भी डेट वगैरह बनाते, कैलेंडर बनाते हैं, वो कैसे बनाए। तो देखिए, जो हमारा पंचांग है, हमारा पंचांग बहुत पुरातन है, कई हजार वर्षों से बना हुआ है ये पंचांग, और ये तो भगवान से ही बना हुआ है, इसके बहुत सारे श्लोक भी हैं। तो ये जो पंचांग हम लोग देख रहे हैं, हमारा पुरातन काल से, तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम लोग भी अपना, ब्रिटेन जो है वो, उसने भी क्या सोचा, हम लोग भी अपना एक कैलेंडर बनाएंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, कैलेंडर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इन लोगों ने बोला कि हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं कैसे बनाएंगे, तो बस आज पहला तारीख है, ऐसा पकड़ लो, ऐसा इनके दिमाग में है कि आज पहला तारीख है, ये मान के चलो। तो ठीक है, आज एक तारीख है, तो एक तारीख से इन्होंने जोड़ा, तो महीने का एंड कैसे करें, तो महीने का एंड 30 दिन से करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते रहते हैं, तो उसके आधार पे, अभी वो मैं आपको समझाऊंगा आगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो उन लोगों ने कहा कि शुक्ल पक्ष में ये है और कृष्ण पक्ष में, यानी टोटल मिलाकर के 30 दिन होते हैं, तो चलो 30 दिन का मतलब होता है एक महीना, तो हम 30 तारीख जोड़ लेते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक महीने को 30 तारीख, 2 महीने को 30 तारीख, 3रे महीने को 30 तारीख, ऐसे कर करके इन्होंने 12 महीने इन्होंने भी बनाए, 12 महीने, और उसको सबको 30-30 तारीख में बांट दिया। तो फिर जब कुछ साल बीते, 4 साल बीते, तो इन्होंने देखा कि जिस तारीख को, जिस दिन को एक तारीख आना चाहिए, उसमें अभी 4-5 दिन का डिफरेंट हो गया, 4-5 दिन उसमें से गैप आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि सबको ठीक है, फिर ऐसा लिख दिया 30-31, 30-31, ऐसा कर दिया कि चलो अब कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगले 50-60 सालों के बाद इन लोगों ने देखा कि अरे, तो फिर गड़बड़ हो गया, हम लोग को आज जो एक तारीख आनी चाहिए थी वो तो अगले 15 दिन के बाद एक तारीख आ रही है, 15 दिन के बाद में एक तारीख आ रही है, तो क्या किया जाए। तो ये लोग ने 15 दिन ना बोल करके बोला कि हमारा 11 दिन का गैप आ रहा है, उसको क्या किया जाए। तो उनके राजा ने पहले तो बोला कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाओ, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाने के लिए वो लोग तैयार थे, लेकिन उनके हिसाब से भी डेट वगैरह सब प्रॉपर नहीं बैठ रहा था। तो जब उन लोगों ने कैलेंडर बना दिया था तो उसमें 11 दिन का गैप आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, वो राजा को पूछा कि अभी ये 11 दिन का गैप आ रहा है, इसको कैसे एडजस्ट करें, हमारे पास कुछ इलाज नहीं मिल रहा है इसका। तो राजा ने बोला एक काम करो, अब जब कुछ इलाज है ही नहीं हमारे पास, तो एक काम करो, ये डेट निकाल दो उसमें से, कैलेंडर में से। यानी एक तारीख, दो तारीख के बाद में एक तारीख से लेकर के डायरेक्ट 12 तारीख आ जाता है, जो भी है 11, 12, 13 जो। तो टोटल 11 दिन का कैलेंडर से उड़ा दिया उन लोगों ने। अब आप मानिए, जिस तारीख को आप अपना आज का तारीख मान रहे, क्या ये वही तारीख है क्या, पहला प्रश्न है। जिस बर्थ डेट को हम अपना बर्थ डेट मना करके उसके आधार पे अगर हम अपना दिन तिथि ये सारे जो आज के लोग जनरली वही याद रखते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो जो 11 दिन का गैप कर दिया है, तो इसका मतलब है वो पूरा इतिहास को बदल दिया इन लोगों ने। यानी उनके हिसाब से जो ग्रह नक्षत्र अगर होते, वैसे वो लोग अब मानने लगे हैं, उसके पहले नहीं मानते, तो वो हिसाब से क्या करने लगे थे ये लोग, सब कुछ उलट पुलट करके पूरा कैलेंडर को इन्होंने बिगाड़ दिया। तो जो ग्रिगोरियन राजा था, ये बहुत चाहता था कि लोग ये कैलेंडर को फॉलो करें, लेकिन जो जूलियन लोग थे, जो जूलियन जिन लोगों ने जूलियन कैलेंडर पहले फॉलो करते थे, तो वो लोग 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से उनके हिसाब से जो 1 अप्रैल आता था वही उस साल का पहला दिन माना जाता था। लेकिन जो ग्रिगोरियन राजा था उसका कहना था कि 1 तारीख जो 1 अप्रैल है वो नया साल नहीं होगा, 1 जनवरी ही नया साल माना जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो बहुत सारे लोग नहीं मानते थे राजा की बातों को, लोग जूलियन कैलेंडर को ही फॉलो करते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप गूगल पे जाकर के सिर्फ कैलेंडर सर्च करोगे तो आपको कम से कम 25-30 टाइप के कैलेंडर चलते हैं जो आज भी फॉलो हो रहे हैं। जैसे हम हिंदुओं में विक्रम संवत, शक संवत नाम का पंचांग या उसको फॉलो करते हैं हम लोग, मुस्लिम लोग अपना इस्लामिक कैलेंडर फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी जूलियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, और कुछ जूलियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, कुछ रोमन कैलेंडर फॉलो करते हैं, बहुत सारे प्रकार के कैलेंडर हैं। हम लोग जो देख रहे हैं बस वो एक ही दो नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग अपने कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो ये जो राजा था इसने बोला था कि नहीं, 1 जनवरी से ही सब लोग नया साल मनाना चाहिए, 1 अप्रैल से कोई नया साल नहीं मनाएगा। तो लोग तो ऐसे ही चालू थे अपना, जैसे 1 अप्रैल आता था तो ही बोलते थे आज हमारा पहला साल है। तो कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पे कांदा बांधते थे, यानी प्याज बांध के वो लोग नए साल का उद्घाटन करते थे। कुछ लोग नए साल में अपने घरों में के बाहर आकर के घंटी बजाते थे, कुछ लोग नए वर्ष के आधार पे कुछ नया नया कार्य करते रहते थे, इस प्रकार कोई मिठाई बना के बैठता था, कोई कुछ करता था। तो इस राजा को गुस्सा है, कोई उसका बात नहीं मान रहा था। तो उस राजा ने कहा कि आज से जो भी व्यक्ति 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा उसको फूल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे उसको। तो आज आप सभी जो लोग अप्रैल फूल बड़ी खुशी से मनाते हो, वो क्या है आज आपको मालूम पड़ गया होगा। ये जो अप्रैल फूल आता है ये अप्रैल फूल नहीं है, ये एक राजा का अपने हिसाब से अपनी बुद्धि के अनुसार उसका बनाया हुआ दिन है, और इसलिए हम लोग उसे अप्रैल फूल कहते हैं। तो वास्तव में ये अप्रैल फूल वगैरह ये सब पूरी फालतू, पूरी बकवास है ये। और अगर आप वास्तव में भी देखेंगे तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर, यानी हमारा जो हिंदू पंचांग है या हमारा जो सनातन पंचांग है, उसमें क्या लिखा रहता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इत्यादि से, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में जो महीने आते हैं वहां से हमारा महीना या नया वर्ष का प्रारंभ होता है। जब गुड़ी पड़वा आता है, नवरात्रि का पहला दिन आता है चैत्र मास का, तो उसको हम लोग पहला वर्ष मानते हैं। लेकिन हमारे ये जो इतिहास में ये सब जो चला अंग्रेजों के द्वारा, तो इन लोगों ने अपने हिसाब से पूरे समाज को बदलने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी हुए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज उन लोगों ने जब हमारे देश में आए, हमारे देश में राज्य किया 200 साल, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से कैलेंडर बना दिया, अपने हिसाब से रूल्स फॉलो कराए, उन्होंने ही हमारे बहुत सारे ट्रेडिशन को बदल दिया और आज हम उसी को फॉलो करते हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उन लोगों ने उसको आज भी हिंदी में ही रखा है, उसको इंग्लिश में भी हिंदी शब्द का ही उच्चारण करते हैं, और हमारे अंदर भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी में चले आ गए, क्योंकि ये उनकी देन है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आप कभी कभी अगर आप अपना टाइमिंग देखते हैं इंटरनेशनल लेवल में, तो हमारा यहाँ लिखा रहता है +5:30। तो यानी हमारा जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे आगे है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और यहां से दूसरे स्थान पर जाएंगे यानी पश्चिम साइड जाएंगे तो वहां पर भी -7.5, -2 घंटा, -4 घंटा ऐसा भी लिखा रहता है उनका टाइमिंग के हिसाब से। तो इसका अर्थ ये है कि जो सूर्य होता है वो सूर्य पहले कहां उगता है, ये बात पे प्रश्न उठा था। देखिए, बिना सूर्य के कोई पंचांग नहीं हो सकता। सूर्य के बिना, सूर्य की जानकारी यदि हम नहीं लेंगे तो हमें पंचांग के विषय में नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इन अंग्रेजों ने बोला कि ये दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहां उदय होता है। तो हम लोग जो सवाल हमें हमेशा बातें करते नहीं, जब जागो तब सवेरा, तो ये लोग उस बुद्धि के थे। इन लोगों ने क्या किया, बोले पता नहीं कहां पर सूर्य पहले उगता है, एक काम करो, वैसे तो हमें लगता है कि सूर्य हमारे इधर ही पहले उगता है, तो इसलिए ने बोला ब्रिटेन में ही सूर्य सबसे पहले उदय होता है। तो ब्रिटेन एरिया को पॉइंट जीरो किया गया है और वहां से आप आगे देखेंगे तो आगे आगे जो देश हैं उनको वैसा ही, किसी को 1 घंटा, किसी को 1.5, किसी को 2, तो हमारे इंडिया को 5.5 घंटे का टाइमिंग बताया उन लोगों ने। यानी सूर्य हमारे इधर 5.5 घंटा पहले आगे चला जाता है या बाद में आता है उनके हिसाब से, ऐसा है। तो ये इनका कहना, इसीलिए इन लोगों के आधार पे जो सूर्य पहले उदय होता है इनको लगता है कि वो उनके देश में पहले होता है, उसी के आधार पे उन लोगों ने वैसे टाइम को कैलकुलेट किया हुआ है। और इसी आधार पे वही टाइम को जब हम यहाँ पे रहते हैं तो अलग फॉलो करते हैं, विदेश में रहते हैं तो अलग फॉलो करते हैं। कुछ लोग का कहना है कि वो वहां पे दिन रहता है, यहाँ पे रात रहती है, तो ये तो हर जगह है, दिन रात सब जगह अलग अलग चलते रहते हैं। लेकिन सूर्य, आप जैसे अगर दिल्ली में भी बैठे हो या मुंबई में, कोई जयपुर में बैठा है, कहीं पर भी बैठा है कोई व्यक्ति, तो उस स्थान को अपना 0 पॉइंट मान के वहीं से आज का दिन का तिथि वार नक्षत्र को समझ के मुहूर्त को सेट कर सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद कुछ लोगों को ना समझे, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। जो सूर्य होता है जब वो उदय होता है उसी के समय पर, यानी जैसे आज सूर्य मुंबई में 6:40 पे यदि उदय हो रहा है तो दिल्ली में जरूरी नहीं कि 6:40 पे उदय होगा। दिल्ली में तो सूर्य कभी 5:50, कभी 5:30 ऐसे ऐसे करके उदय होते हैं। वो उनका सूर्य जो है, सबके सूर्य जो है उसका टाइमिंग थोड़ा थोड़ा आगे अलग होता है, क्योंकि सूर्य कहीं पर पहले उदय होता है, कहीं पर बाद में होता है ना। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं 1-1.5 घंटे का भी डिफरेंस आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि सूर्य जहां पर उदय होता है, जैसे हम लोग वैष्णव कैलेंडर में भी हम लोग सुनते हैं बार बार कि इनका तिथि अलग है, आज दिल्ली में मनाया जाएगा उसका एकादशी अलग है, मुंबई में जो मनाया जाएगा वो एकादशी अलग है। जैसे मायापुर में कभी कभी एकादशी 1 दिन पहले मनाया जाता है ना। एक बार ऐसा हुआ था कि हम गए थे फ्लाइट से मायापुर और वहां पे हम उस दिन रुके, और दूसरे दिन मॉर्निंग में हम फ्लाइट लेकर के जब मुंबई आए तो मुंबई में भी उस दिन एकादशी था, यानी 2 दिन एकादशी चला मेरा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वहां का कैलेंडर 1 दिन आगे पीछे चलता है या यहाँ का कैलेंडर 1 दिन आगे पीछे चलता है।
तो वो डबल फायदा हो गया, डबल कृपा मिल गई आपको।
तो ये जो कैलेंडर है, ये जो हमारा कैलेंडर चलता है आगे पीछे, ये सूर्य के ऊपर आधारित है। यदि सूर्य जो है उसको हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान को आज का जो सूर्य हुआ है उसी के आधार पे हमें अपना मुहूर्त सेट करना चाहिए। तो जैसे कोई व्यक्ति कहेगा महाराष्ट्र से मुहूर्त निकाल के कहेगा कि हमें यूपी में पूजा कराना है तो वो मुहूर्त गलत निकलेगा। हाँ, यदि वो वहां के सूर्य का यदि समय जानता है कि वहां का कल का सूर्य उदय कितने बजे होगा तो उसके आधार पे वो वहां का मुहूर्त बताएगा तो वो सही मुहूर्त बनेगा। तो बिना सूर्य के कोई पंचांग, कोई भी विधि विधान नहीं होता है। इसीलिए कोई भी संस्कार जो होता है वो सूर्य जब तक रहता है तभी तक होता है, जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है कोई संस्कार नहीं होता है। और इसीलिए वैसे तो सूर्य का ऐसा सिस्टम है संस्कारों में, सूर्य उदय से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक जब सूर्य केवल हमारे मस्तक के ऊपर चला आता है तब तक ही विधि विधान किया जाना चाहिए। जैसे सूर्य हमारे ऊपर से इस तरफ जाने लगता है तो विधि विधान नहीं करना चाहिए, वो पीठ की तरफ चला गया, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं अपने हिसाब से। तो खैर इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब तक सूर्य है तभी आप घर में कोई यज्ञ पूजा विधि विधान करना चाहिए, यदि सूर्य नहीं है तो कोई संस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे जन्म हो चाहे विवाह हो चाहे मृत्यु हो, कोई भी संस्कार होते हैं वो सभी संस्कार सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के अंत तक के बीच में हो जाना चाहिए। तो ये लोग जो थे इन लोगों ने सूर्य को केंद्र बिंदु मान के सोचा कि हमारे सूर्य जो है वही केंद्र बिंदु है और उसको अपना बिंदु मान करके हम लोगों को 5.5 घंटा बढ़ा दिया ऐसा करके, तो इनको ये उनकी बुद्धि है। ठीक है, हमारा वेद शास्त्र कहता है कि आप जिस भी स्थान पर बैठे हो वही आपका पॉइंट है, आप उसी पॉइंट को, और ऐसा भी नहीं कि अगर जैसे मान लीजिए मैं मुंबई में रहता हूं तो मुंबई में भी इतना बड़ा मुंबई है, उस मुंबई में मैं जिस स्थान पर हूं जिस लैटिट्यूड जो देशांतर रेखाएं हैं, रेखांतर जो हमारी रेखाएं खींची हुई है, हमारे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अपने स्कूल में भूगोल में, तो उसमें गया हुआ है कि एक रेखा गई हुई है हमारे देश के ऊपर से, उस रेखा के साइड से आप देखोगे कि कुछ लोगों की हाइट जो होती है बहुत लंबी होती है, उस स्थान पे बहुत गर्मी ज्यादा होती है, ऐसे ऐसे आप देखोगे अलग अलग प्रकार के उनके अपने भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल सबका अपना अपना नेचर होता है। तो ये जो रेखांतर और देशांतर है लैटिट्यूड और लैटिट्यूड, इसको जब हम लोग देखते हैं तो जैसे हम उसको कैसे सेट करते हैं, जैसे आप ओला उबर बुलाते हो है ना, आप लोग कभी लोकेशन सेंड करते हो या अपने घर का लोकेशन सेंड करते हो गूगल पे, तो वो कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अपना लोकेशन दिखाते हैं, तो वो कभी कभी एक ऐसा डंडी जैसा रहता है मैप के ऊपर में, तो हम लोग जब बुक करते हैं तो वो डंडी यहाँ दिखाता है लेकिन हम रहते यहाँ पर हैं, तो ए स्थान की जगह हम बी स्थान पे उसको ला करके रखते हैं और वो कार फिर हमारे पास आ पाता है। तो देखिए एक छोटी सी कार बुक करने के लिए अपने लोकेशन पे लाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है, तो वैसे ही आप जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान को सूर्य को लेकर के उस दिन का मुहूर्त बनाया जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग जो मुहूर्त वगैरह देख लेते हैं इजीली बता देते हैं हाँ कल का आपका पूजा हो जाएगा परसों का पूजा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर मुहूर्त होता है और मुहूर्त को हमें फॉलो करते रहना चाहिए, लेकिन वो हमें तब मालूम पड़ेगा जब हमें कम से कम ये सारे शिक्षाएं या ज्ञान होगा, तब हम लोग इसके विषय में चर्चा कर पाएंगे। आगे इन लोगों ने क्या किया, एक तो कैलेंडर बदल दिया, उसमें से 11 दिन गायब कर दिया, दूसरा इन लोगों ने सूर्य को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया, फिर आगे इन लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, एक तो दिन भी हमारा आगे पीछे नहीं समझ में आ रहा है, कैलेंडर भी हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो बोले अब ये जो दिन आता है संडे मंडे इसका कैसे करें, इसको कैसे बदलें, बोले इसको बदलो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसलिए जो हमारा संडे मंडे ट्यूसडे चलाते हैं लोग, वो इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि आज भी संडे का मतलब ही होता सूर्य का दिन, मंडे मतलब मून का दिन यानी चंद्रमा का दिन, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, जो जितने भी हमारे नक्षत्र हैं 9 नक्षत्र हैं जिसमें से राहु केतु को छोड़ दिया जाए, तो सूर्य से लेकर के शनि तक जितने भी हमारे नक्षत्र हैं उसके आधार पर हमारे दिन बैठाए गए हैं, ये कोई नया बात नहीं है। अभी कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, हम इसे फॉलो नहीं करते, या हमें बताया नहीं गया कि इसको इसके ऊपर फॉलो करना चाहिए, केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, उन लोगों को मैं विशेष बात बता रहा हूं कि देखिए आप कितना भी सब कुछ इग्नोर कर दीजिए फिर भी आपको सब मानना पड़ेगा, आपको अगर इस दुनिया में रहना तो ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। तो इसलिए जब हम अंग्रेजी चीजों को मानते हैं तो हमें अपनी जो सांस्कृतिक जो सनातन जो लिखा हुआ पंचांग है उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं करना है। तो इसलिए यह जो दिन है सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये ग्रहों के ऊपर आधारित है, अगर वो ग्रह है इसीलिए आज हमारा ये दिन है, आज कौन सा दिन है रविवार, सूर्य का दिन है। तो जिस दिन हम जो भी दिन को मानते हैं वो ग्रहों के ऊपर ही आधारित है, ग्रह नहीं होंगे तो वो दिन नहीं माना जाएगा। अगर सूर्य मान लो पृथ्वी, सूर्य को तो छोड़ो सूर्य तो नहीं जाएगा, मान लो शनि अपने स्थान से गायब हो जाए, मान लो गायब हो जाए, तो हमारा जो कैलेंडर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, यानी उसका जो जो चक्र चल रहा है काल चक्र घूम रहा है जो, ये सब तहस नहस हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे अपनी जगह से। इसके लिए ये लोग अपने सिस्टम पे प्रॉपरली काम करते हैं और इनको भगवान ने उस प्रकार ऐसा सेट किया हुआ है कि सब अपने रेंज से अपने प्रॉपरली अपने तरीके से घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी आप खैर इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं भागवतम में आप पढ़ोगे खासकर आठवें स्कंद में, तो उसमें प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं और सातवें स्कंद में भी और भी कई सारे स्थानों पर बोलते हैं कि जो सूर्य है पृथ्वी केवल उसका चक्कर नहीं लगाता, सूर्य भी चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ऐसा भी बताया गया है। तो हम लोग जो प्लैनेट सिस्टम को देखते हैं ऐसा नहीं कि सूर्य एक स्थान पे, जैसे हमारे ज्योग्राफिकली लोग क्या बताते हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक लोग कि सूर्य अपने स्थान पर रहता है, पृथ्वी घूमता है, बाकी सब ग्रह घूमते, लेकिन सूर्य केवल अपने अक्ष पे घूमता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य भी घूमता है और सूर्य भी पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगाता है। तो ये उनका भी अपना एक कैलकुलेशन है, वो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि सूर्य एक स्थान पर नहीं रुकता है, सूर्य भी घूमता रहता है, सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है, पृथ्वी घूमती है, सब घूमते रहते हैं। इसलिए हम भी घूमते रहते हैं, कभी हमको लगता है भक्ति करना चाहिए, कभी हमको लगता है भक्ति नहीं करना चाहिए। ये हमारे मन के ऊपर वैसा असर इसलिए आता है, कभी कभी हम देखते हैं कि आज हमारे से बहुत अच्छा जप हो रहा है, और कभी कभी लगते हैं कि जप कितना भी प्रयास कर लेंगे अच्छा जप नहीं होता है। तो ये ग्रह हमारे ऊपर इसलिए भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, शुद्ध भक्तों का बात छोड़ के ये बात को समझ के चलो। ठीक है, तो इन लोगों ने सूर्य को बदला, समय को भी अपने हिसाब से कंट्रोल किया, और हम लोगों को इन लोगों ने बताया कि चलो ठीक है ये सब सारे चीजें जो है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को इन लोगों ने वैसे ही रख लिया, उनको चेंज नहीं किया। और ये 12 महीने का आइडिया कॉन्सेप्ट कहां से मिला इनको, कहां से आया 12 महीना? तो ये जो हमारे 12 राशियां हैं उसी को ही 12 महीना कहा गया है। आप जो सुनते रहते हैं ना मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति कहां से आता है, यानी जब मकर जो राशि होता है उसमें जब सूर्य एंट्री करता है तो उसको मकर राशि कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। यानी सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है। तो अभी मैं उसके विषय में आपको पहले समझाऊंगा, पहले हम पंचांग के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये ऐसा है कि यानी 12 जो महीने हैं हमारे, ये जो जनवरी फरवरी हमें याद है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं किसी को पूछूं कि हिंदी जो हमारे महीनों के नाम उसे बताओ तो बहुत कम लोग ही शायद ही बता पाए, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं है, उसका उपयोग भी नहीं है, तो कैसे याद रहेगा। तो इसलिए आपको मैं आज बताने वाला हूं कि एक एप्लीकेशन है, उसको अगर आप डाउनलोड करके उसमें रोज आप पढ़ सकते हैं कि आज का कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, कौन सा करण है, कौन सा योग है, कौन सा साल है। हमारे हर साल का नाम होता है, ऐसा नहीं कि बस 2020 बोल दिया, हर साल का एक नाम होता है और ये हर एक साल के बाद बदल जाता है। जैसे 2020 के बाद जब 2021 आएगा तो उस साल का नाम अलग हो जाएगा, हमेशा हर साल का एक नाम है। आज से चाहे 10,000 नहीं 100,000 साल भी बीतेंगे तो हर एक साल का अपना एक नाम है, और ये नाम भी अद्भुत है, और ये पूरा सेट किया हुआ है हमारे शास्त्रों में, और आजकल के जो टेक्नोलॉजी है उन लोगों में भी इजिली वो शो होता रहता है। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको तिथि के विषय में समझाऊंगा। तो ये है हमारा तिथि, तिथि किस पर आधारित है, चंद्रमा के ऊपर। जब चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जब घटता है और जब घटने के बाद फिर बढ़ता है तो उसको तिथि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा बढ़ते बढ़ते जब पूरा होता है और फिर घटते घटते जब पूरा समाप्त हो जाता है तो उसको हम लोग तिथि कहते हैं। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, लेकिन यही एक हमारा एक प्रकार का साइन है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे आप आपके बाएं तरफ से अगर आप देखेंगे, लेफ्ट साइड से, कि पहले देखो चंद्रमा थोड़ा सा बड़ा है, फिर आगे और बढ़ा है, फिर आगे उसके बाद और भी बड़ा है ना। आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले देखिए थोड़ा सा है, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और उसके बाद और ये फुल मून है। ठीक है, ये फुल मून है यहां पर। अब इसके बाद में देखेंगे, देखिए थोड़ा सा चंद्रमा घट रहा है, इसमें और कम, इसमें और कम, उसके पीछे और कम, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या करता है कि चंद्रमा जब बढ़ते 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 पूरा होता है तो उसको हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। और जब चंद्रमा घटते घटते पूरा घट जाता है तो उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको देखिए, यहां ध्यान से, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो जो शुक्ल पक्ष है, जब चंद्रमा बढ़ते रहता है, जिसको इंग्लिश में वैक्सिंग मून कहते हैं, यानी चंद्रमा बढ़ रहा है रोज, पहले दिन से ज्यादा उसकी प्रकाशित होता रहता है, ज्यादा प्रकाश होता रहता है, तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो देखिए, ये जो चंद्रमा बढ़ता है तो प्रतिपदा यानी पहले तिथि से लेकर के एक दो तीन चार पांच छह से लेकर के सीधा पंद्रहवीं तिथि यानी जब पंद्रहवा तिथि आता है तो उसको पूर्णिमा कहते हैं। यानी जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते 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 बढ़ के पंद्रहवीं तिथि पे चला जाता है, पंद्रहवा दिन होता है, तो चंद्रमा को पूर्णिमा लग जाता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी पूरा चंद्रमा अब दिखाई दे रहा है, पूरा प्रकाशित रहता है, पूरा अंधेरा हो जाए तो भी आपको पूरा लाइट रहता है, पूरा दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और अब कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं, अब चंद्रमा धीरे 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 घट रहा है, और घटते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है 15 दिन के में कि उसको हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो आगे का जो स्लाइड है उसमें मैंने उस तिथियों को अच्छे से दिखाया है कि आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। देखिए, ये है सभी तिथियों के नाम जो हम लोग सुनते हैं ना, प्रतिपदा, द्वितीया, है ना, फिर तृतीया, अक्षय तृतीया जो आता है वो इसी तृतीया को पकड़ के ही बोलते हैं अक्षय तृतीया। हर महीने नहीं आता है ये सब, लेकिन ये हर महीने में ये 15-15 तिथियां फिक्स है, ये लगने वाली ही है। लेकिन हमारे जो वर्ष में कौन से महीने में लगता है, वो महीने के नाम भी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझेगा कि उस महीने में जब ये तिथि लगेगी तो उस दिन को उसका नया त्योहार मनाया जाता है। जैसे अक्षय तृतीया आके चली गई है ना, गणेश चतुर्थी आएगी कब, जब सितंबर का महीना आएगा, फिर नाग पंचमी लगता है कभी कभी, फिर लोग ये छठ मनाते हैं यानी वो षष्ठी तिथि को मनाते हैं, फिर कुछ लोग सप्तमी मनाते हैं, कुछ लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जन्माष्टमी कब मनाते हैं, जब ये जो अष्टमी तिथि आ रही है, अष्टमी तिथि जिस समय लगती है उसको उस दिन का जन्माष्टमी यानी कृष्ण का जन्म का समय बताया जाता है। फिर जैसे रामनवमी अभी आके गया, फिर दशमी का एक तिथि है एकादशी, जैसे अभी आते अभी आकर के गया, फिर वामन द्वादशी मनाते हैं कभी कभी हम लोग, हाँ नित्यानंद त्रयोदशी मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी अभी हमने मनाया, गौर पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं, या सोमवती अमावस्या मनाया जाता है, या अनेकों अनेकों प्रकार के अमावस्याओं के नाम है, अभी उनका भी मैं उदाहरण दूंगा। तो इस प्रकार से ये 15 तिथि फिक्स है, यानी 15 तिथि क्या है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, इसको हम शुक्ल पक्ष कहेंगे। और फिर एज इट इज प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी के बाद में फिर अमावस्या लग जाएगा, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन तिथियों के आधार पे ही हमारी तिथि लगती है, ठीक है। तो अब इसे हम बंद करके आगे का स्लाइड पे ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए आपको कुछ बताना चाहता हूं इसमें। जैसे अभी मैंने बताया कि पूर्णिमा का भी अपना एक नाम होता है ना, तो जैसे कार्तिक पूर्णिमा है ना, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा हम लोग मनाते रहते हैं हमेशा, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये सारी जो पूर्णिमा लगती है कब लगती है, जब चंद्रमा अपने पूरे भाव में होता है, चंद्रमा पूरी स्थिति में होता है, तब उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। फिर जैसे अमावस्या के भी कुछ नाम है, भौमवती अमावस्या, यानी जब मंगलवार के दिन अगर अमावस्या लगेगा तो उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं, ठीक है। फिर मौनी अमावस्या अलग है, शनि अमावस्या मतलब शनिवार को जो अमावस्या लगती है, हरियाली अमावस्या वो खासकर बुधवार के समय में आती है, दीपावली अमावस्या केवल अमावस्या को पकड़ के मनाया जाता है, सोमवती अमावस्या साल में एक या दो बार ही आता है, इसमें एक इसके लिए वृंदावन में एक स्पेशल बताया जाता है, कोई तो एक गांव है उसका नाम मैं भूल गया, अगर किसी भक्त को याद आए तो बता देना, तो वहां पर कहा जाता है कि उस कुंड में, शायद राधा कुंड में बोलते हैं या कोई और कुंड है, उस गांव के जो वृंदावन वासी हैं बोलते हैं उस कुंड में यदि कोई नहा लेता है तो उस कुंड में नहाने के समय में उन्हें जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे होने लगते, माने बच्चे या पुत्र की प्राप्ति होती है, तो सोमवती अमावस्या का उसमें काफी महत्व माना गया। वो गांव के लोग ही, गांव की जो स्त्रियां होती वही उस स्त्री को बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक सोमवती अमावस्या है, सर्वपित्री अमावस्या, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष लगेगा तो उसमें सर्वपित्री अमावस्या एक लगता है, ठीक है। फिर ऐसे ही है तिथियों के नाम है, पूर्णिमा है, अभी जैसे हम लोग पूर्ण पूर्णिमा को कुछ लोग पूर्णमासी बोलते हैं, कुछ लोग प्रतिपदा को पड़वा कहते हैं, है ना, गुड़ी पाड़वा, ये जो शब्द आता है खास विशेषकर महाराष्ट्र में ज्यादा इसका महत्व माना गया है, तो गुड़ी पाड़वा को पाड़वा बोलते हैं लोग, द्वितीया को दूज बोलते हैं, भाई दूज वगैरह आता है, तीज मनाते हैं कुछ लोग, है ना, उसके बाद में चौथ मनाया जाता है, नाग पंचमी मनाया जाता है, छठ मनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एकादशी को कुछ लोग ग्यारस बोलते हैं, है ना, या द्वादशी को बारस बोलते हैं, है ना, ये सब ऐसे नाम है, या त्रयोदशी को तेरस बोलते हैं, जैसे महाशिवरात्रि यात्री है तो वो त्रयोदशी के दिन ही लगता है, ठीक है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए जो त्रयोदशी लगेगा वो द्वादशी को या एकादशी को कभी भी शिवरात्रि नहीं आएगी, त्रयोदशी को ही, या इसको प्रदोष भी कहते हैं, ठीक है, जो त्रयोदशी आता है, कुछ लोग आप लोगों ने सुना होगा परदोष परदोष ऐसा गांव में उच्चारण करते हैं, है ना, तो परदोष नहीं है प्रदोष बोलते हैं, और वो खासकर त्रयोदशी के दिन लगता है। फिर उसके बाद में आता है चतुर्दशी, ठीक है, इसको चौदस भी बोलते हैं, और अमावस्या को अमावस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार इन तिथियों के अपने एक नाम होते हैं और उसके नाम से ही हम लोग उसको वहां से मानते हैं। तो अब आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ चुका होगा कि किस प्रकार से ये तिथि जो है हमारे लिए कार्य करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आगे के चीजों को बढ़ाते जाता हूं। अब हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं वार, ठीक है। तो हमारे वार का जो है ये फिक्स है, हर जगह ये वार चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले है रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, इस प्रकार के ये जो वार है उसे ही हम लोग अपने दिन का, ये जो सारे सात दिन आते हैं, एक सेकेंड, हाँ हरे कृष्ण। तो ये जितने भी हमारे जो तिथि है, वार है, नक्षत्र है, जिसमें से अभी हम वार के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, ये सभी उस ग्रह से संबंधित है। तो इस विषय पे मैंने चर्चा पहले ही कर ली है, तो इसे ज्यादा तो इसमें जानने के लिए अभी नहीं रह गया है, बट फिर भी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य, मतलब रविवार को सूर्य का दिन भी कहा जाता है, चंद्रमा को कुछ लोग ये सोमवार भी कहते हैं, कुछ लोग चंद्रवार भी कहते हैं, मंगलवार को भौमवार भी कहते हैं, भौम यानी मंगलवार, बुधवार का नाम सेम रहता है, बृहस्पति गुरुवार को जनरली कुछ लोग,
थोड़ा जूम आउट करिएगा,
सॉरी
स्क्रीन को थोड़ा जूम आउट करिए,
इससे ज्यादा जूम आउट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक,
जूम इन नहीं, डोंट जूम आउट, जूम आउट।
अच्छा ऐसा,
ठीक है,
ओके।
तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन को ना जूम आउट ही रहिए।
अच्छा,
रिकॉर्डिंग में से वो बाद में दिखता नहीं है।
ओके ओके ठीक है,
हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग खुद जूम कर सकते हैं प्रभु जी।
अच्छा अच्छा चलेगा, ओके। तो ये जो वार है इसमें आप देख सकते हैं कि ये जितने भी, जैसे बृहस्पति है, ये गुरुवार को भी बहुत अच्छा वार माना गया बृहस्पति, और शुक्रवार अपना है, शनिवार अपना है। अब आपको इसमें और एक चीजें बता देता हूं, ये जो डेज हैं इसी के आधार पे कलर भी निर्भर करता है। जैसे रविवार का कलर क्या होगा, येलो पीला, सोमवार का कलर व्हाइट, मंगलवार का कलर रेड, बुधवार का कलर ग्रीन, गुरुवार का कलर येलो, शुक्रवार का कलर व्हाइट और शनिवार का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये जिन लोगों ने अभी ये कलर के विषय में सुना है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आप फिर से लिख सकें। रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला येलो, शुक्रवार को फिर से सफेद और शनिवार को काला, है ना। तो अभी ये जो हीरा पन्ना, ये आप लोग सुनते होंगे कि कौन सा पहनना चाहिए, कभी कोई बता देता है कि पन्ना पहन लो, कोई बोलता है कि डायमंड पहन लो, कोई बोलता है मोती पहन लो। तो ये सब जो है, जैसे चंद्रमा का कारक है मोती या चांदी, और उसी प्रकार जो शुक्र है उसका स्वरूप है डायमंड, है ना, हीरा जो होता है वो शुक्र का प्रभावित, शुक्र का प्रभाव होता है। नीलम जो होता है वो शनि का होता है। बुध जो होता है उसको पन्ना कहते हैं लोग, और गुरुवार को जो गुरु का जो उसका जो पत्थर माना जाता है, विशेषकर क्या उसका नाम है, मैं भूल गया, क्षमा कीजिएगा। तो जिसको येलो सफायर भी कहते हैं कुछ लोग, पुखराज बोलते हैं, हाँ सॉरी पुखराज बोलते हैं। तो जो पुखराज होता है तो उसे धन्यवाद प्रभु जी, आपके चैटिंग में भी पढ़ा मैंने। तो पुखराज जो होता है वो गुरुवार के लिए होता है, और जो सूर्य होता है उसके लिए भी कभी कभी कोई लोग पुखराज का वर्णन दे देते हैं, या कुछ लोग बता देते हैं कि आप सूर्य को अर्घ दो। तो ये जब अगर आपका कोई प्लेनेट, या मान लीजिए कोई दिन आपका बहुत खराब जा रहा है, अगर आप कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हमेशा कुछ लोगों के जीवन में ऐसा कोई एक दिन, हफ्ता है, सप्ताह में एक दिन ऐसा आता है जिसमें उसको बहुत ज्यादा, उस दिन बहुत कष्ट मिलता है, तो उस दिन के हिसाब से, लेकिन अगर आप अच्छे पहले जानकार है एस्ट्रोलॉजी के आधार पे ही कोई पत्थर को पहनना चाहिए, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है शास्त्रों में, और मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि अगर आप उस दिन का उस कलर, उस रंग का कपड़ा भी पहनेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलता है, आपके मन को बहुत शांति मिलती है। और उसी प्रकार का जो ये कलर होता है ये हमारे मन पे भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो जैसा उसका रंग है वैसे उसके काम भी होते हैं। जैसे मंडे आता है थोड़ा शांत होता है, आजकल तो लोग ऑफिस जाते हैं थोड़े अशांत हो जाते हैं, लेकिन सोम जो होता है वो शांत वाला दिन होता है, मंगलवार उग्र दिन होता है, बुधवार सम दिन होता है यानी सब मिनिमम होता है, गुरुवार बहुत उत्साह वाला दिन होता है, शुक्रवार भी शुक्र का कार्य यानी बहुत अच्छा होता है, आनंद वाला विषय होता है। आपको पता है जो मूवीज वगैरह रिलीज होती है वो जनरली शुक्रवार को क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि लोग उससे ज्यादा आकर्षित हों, कामुक हों, या किसी भी प्रकार से उनको धन का संचयन हो, इसलिए शुक्रवार का उन लोगों ने विधान लिखा है। ये शुक्रवार केवल हमारे देश में नहीं फॉलो करते, विदेशों में भी फॉलो करते, वहां पर भी हर फ्राइडे को ही मूवी रिलीज होती। तो ये जो शुक्रवार है ये रिलीज का टाइम इसलिए रखा जाता है जनरली, आजकल तो अब लोग उसको भी बदलने लगे हैं, लेकिन शुक्रवार ही मोस्टली आप देखते हैं कि पिक्चर रिलीज होती। उसका भी कारण यही है क्योंकि शुक्र जो होता है वो अट्रैक्शन देता है, शुक्र जो होता है वो अनेकों प्रकार के संपत्ति या सुख सुविधाएं इत्यादि का कारक माना गया है, इसलिए शुक्रवार का दिन ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए लोग शुक्रवार का दिन में कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर लेते हैं, कभी कभी घर का पूजन करना हो तो शुक्रवार का दिन अच्छा माना जाता है, या गुरुवार का दिन अच्छा माना जाता है भगवान विष्णु की पूजा करने, इसके भी अलग अलग स्वामी हैं। तो सूर्य रविवार के स्वामी हैं, चंद्रमा, ये सब जैसे दिन हैं वैसे उनके स्वामी भी कहे गए हैं। तो उनके लिए विशेष विशेष देवी देवताओं के पूजा भी लिखे गए हैं। तो खैर हम सभी भक्त हैं, हमें तो केवल कृष्ण से संबंध है हमारा, तो हमारे लिए गुरुवार तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अगर दिन देखा जाए तो सभी हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन विशेषकर भक्तों के लिए गुरुवार का दिन ज्यादा अच्छा माना जाता है, या रविवार भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये दो दिन बहुत अच्छा माना जाता है जो कृष्ण भक्ति करते हैं या हम सभी कृष्ण भक्त से जुड़े हैं इसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो वार है वो उनसे संबंधित है। तो ये भी मैं जस्ट अपने आप को कंट्रोल करके कि बस मैं इतना ही बता रहा हूं, ऐसा करके मैं उतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके आगे हम चलते हैं, तिथि हो गया, वार हो गया, अब हम चलते हैं नक्षत्र के ऊपर। तो नक्षत्र क्या है, ठीक है। ये जो आप लोग तारे देखते हैं रात में, खासकर जब आसमान साफ हो, आकाश एकदम क्लीन रहता है, पूरा क्लियर रहता है, तो आप लोग देखते हैं आसमान पूरा साफ है, क्लीन है, तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कभी कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे भर भर के तारे रखे हुए हैं वहां पे, और इतने सारे तारे हैं, और इन तारों का क्या महत्व है, ये तारों से हमारा क्या संबंध है, या ये तारों का क्या हम पर भी प्रभाव पड़ता है क्या? तो हाँ, ये तारा का प्रभाव हम पर भी पड़ता है, और बिना तारा के हमारा जीवन नहीं चल सकता। ध्यान से सुनिए, बिना ताराओं के हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसीलिए उन्हीं ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक दो इमेज शेयर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नक्षत्र का मतलब होता है कि कुछ तारे मिल करके कोई एक आकार निर्माण कर लेते हैं, उसको नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप पहले इसको पढ़ सकते हैं, आकाश में तारा मंडल के विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाले आकार को नक्षत्र कहते हैं, और ये नक्षत्र कितने होते हैं, इनको टोटल 27 नक्षत्र वैसे माने गए हैं। ज्योतिष के द्वारा एक अन्य अभिजीत नक्षत्र भी माना गया है, पर चंद्रमा तक 27 नक्षत्रों का भ्रमण करता है, ठीक है। अब ये चंद्रमा का खेल क्या है और इसके वजह से तिथि कैसे बनती है उसके विषय में समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये एक मैं इमेज दिखा दूं ताकि आपको समझ जाए, ठीक है। ये मैंने एक उदाहरण के लिए दिया है, आप जो ये जो बड़ा वाला इमेज है इसको छोड़ दीजिए, जो ब्लैक ब्लैक दो इमेज है, मैं इसको जूम कर रहा हूं वैसे, ठीक है। तो इसमें जो भी आप नक्षत्रों का ये स्वरूप देख रहे हैं, इसको अगर आप और भी विस्तार से देखना चाहते हैं तो मैं और एक वापस से आपको पहले उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये देखिए, आपको इसमें बहुत ध्यान से समझ में आएगा। अब ये एक एक इसमें देखिए कितने, जैसे पहला वाला ही जो हमारा है ना, अभी हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, इस पहले वाले के ऊपर भी अगर हम ध्यान लगाते हैं तो इसमें कितने तारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सोचिए, एक नक्षत्र को, नक्षत्र जो होता है उसी के ऊपर पूरा हमारा राशिफल, कुंडली, ज्योतिष शास्त्र, हमारा पंचांग सब इस नक्षत्र पे आधारित है। और ये जो नक्षत्र होते हैं ये टोटल ऐसे 27 नक्षत्र है, ये जो मैं आपके आगे सामने रखा हूं ये सिर्फ 12 नक्षत्र हैं, लेकिन ऐसे टोटल कितने, 27 नक्षत्र हैं, और ये आकाश में ये पूरे चक्र घूमते रहते हैं इनके, ठीक है। तो ये जो चक्र होता है, इस चक्र को भी एक बार आपको शो कर देते हैं और हम फिर आगे विषय पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, हाँ, अरे तो ये जो चक्र हम लोग देख रहे हैं इस समय, अगर आप चक्र में सबसे पहले अगर आपको कोई दिख रही होगी तो गाय जरूर दिख रही होगी, है ना, जो मीडियम लेवल में है। देखिए सबसे पहले एकदम सेंटर में देखेंगे तो पृथ्वी हमारी दिखाई दे रही है, उसके बाद में जो सेकंड लेटर में कुछ लिखा हुआ है, ये लेटर नहीं है, ये चिन्ह है राशियों के, उन्हीं राशियों के ऊपर में देखिए आपको एक गाय वाला जो सेकंड लास्ट जो राउंड है वो दिख रहा है, और उस गाय के बाजू में भेड़ है, और उस भेड़ के जब आप ऊपर देखेंगे तो एक घोड़े का मुंह है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा देता हूं, फिर आप उसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो घोड़ा जो है वहां से ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है हमें, समझे आप, एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा उसको घुमाना है। जैसे यहां पर ये घोड़ा है हमारा, एक सेकंड मैं आपको पेन से भी एक बार समझा देता हूं। देखिए ये हमारा घोड़ा है, ठीक है, और इस घोड़े के यहां से अगर हम इस प्रकार ऐसे राउंड से घूमेंगे तो ऐसे करके टोटल ये 27 नक्षत्र हमारे दिखेंगे आप, ठीक है। इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं ये जो मैंने इमेज बनाया, ये मैं इमेज निकाला, मैंने डाउनलोड किया है, ये काफी आपको इसे काफी हद तक इससे आपको हेल्प मिलेगा समझने के लिए, ठीक है। इस घोड़े से हमने प्रारंभ किया है और उसके आगे ये सारे यहां पर जाकर के इस स्थान पे रुकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो घोड़ा है इसको अश्विनी कहते हैं, अश्व यानी घोड़ा। तो ऐसे जो 27 नक्षत्र हैं उनके अपने एक चिन्ह हैं, उनका अपना एक फोटो है, और इसी के आधार को ही नक्षत्र कहते हैं। जैसे मैंने वो तारों का जो रूप दिखाया आपको, उससे आपको समझ गया होगा। अब उसके बाद में यह जो चक्र है इसको भी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इनके नाम है अपने, तो इनके नाम पहले आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ये है वो 27 नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब ही होता है जो अपना क्षेत्र कभी ना छोड़े, उसे नक्षत्र कहते हैं। यानी ये जो तारा है ये फिक्स है अपनी जगह, ये अपनी जगह से कभी हिलने वाले नहीं है। ये आज हम लोग जहां पर देख रहे हैं ये कल भी वहीं रहेंगे, लेकिन हमारी पृथ्वी चूंकि घूमती है तो इसलिए हमें लगता है कि ये तारा कल यहां पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा था, आज हमें ये उत्तर दिशा में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसके आधार पर हमें जो तारे हैं वो कभी अलग रूप में दिखते हैं, कभी अलग रूप में दिखते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात है कि ये सारे जो ताराएं हैं ये लोग अपने हिसाब से ये पूरे प्लेनेट में फिक्स रहते हैं, इनका भी जगह स्थान फिक्स है, ये कभी बदलने वाले नहीं। इसलिए इन नक्षत्रों के आधार पे ही, यही जो नक्षत्र है इसी के आधार पे मुहूर्त देखा जाता है, इसी नक्षत्र के आधार पे विवाह संस्कार होता है, इसी नक्षत्र के आधार पे ही हमारी कुंडली निर्माण होती है, इसी नक्षत्र के आधार पे ही हमारे जीवन में हमारा स्वभाव मालूम पड़ता है, या इसी नक्षत्र के आधार पे ही हमारा जो नाम निकलता है ABCD से जो नाम आता है वो इन्हीं नक्षत्रों की वजह से आता है। तो वो काफी डीप हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नक्षत्र ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे जीवन में सब कुछ नक्षत्र ही है। अगर नक्षत्र के विषय में हमें थोड़ा बहुत भी जानकारी हो गया तो हमें काफी कुछ हम समय पे नया नया अच्छा अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे नक्षत्र का भी अपना एक स्वभाव होता है, यानी अच्छे नक्षत्र पे अगर आप कोई कार्य करते हो तो आपको लाभ देगा, अच्छे नक्षत्र नहीं उनके ऊपर अगर उस दिनों में अगर आप कोई कार्य करते हो, अच्छा काम करने का प्रयास करोगे तो आपको नुकसान हो जाता है। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप इतना ही समझ लें तो बहुत है। तो सबसे पहले आप ये नक्षत्र को हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए पहला नक्षत्र का नाम है अश्विन, फिर है भरणी, कृतिका, इस तरीके से ऐसे नीचे आना है हमें, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, फिर ऐसे ही है मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर है मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभीषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, है ना। तो इस प्रकार ये 27 नक्षत्र हैं हमारे। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें से आप जनरली, आप लोगों को कुछ नक्षत्र के विषय में आपने शायद कभी कभी सुना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे जिन लोगों का जन्म होता है मूल नक्षत्र में, तो हम लोग कहते हैं उसकी पूजा करानी चाहिए 27वें दिन पे। तो ये अपने चैन से वापस 27वां दिन जैसे ही बीतेगा, ये वापस से आपको मूल नक्षत्र दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ही, जैसे आज, अगर आज भी मूल नक्षत्र ही है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो आज मूल नक्षत्र है, तो आज मूल नक्षत्र है, तो आज से ठीक 27वें दिन के बाद फिर से मूल नक्षत्र आएगा, फिक्स है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। अगर हम लोग गिनेंगे कि भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो वो चंद्रमा के कारण होता है, तो वो मैं आपको तिथि के आधार और ये सब नक्षत्र जो है ये सब उसके ऊपर घूमते हैं। लेकिन टोटल ओवरऑल बात ऐसी है कि हर 27 या 26.5 दिन के बीच में वही नक्षत्र सेम आपको आ जाएगा, आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये नक्षत्र होते हैं, जिसमें से भी आपने बहुत सारे नक्षत्र हमेशा आप लोग देखते हैं। जैसे खासकर हम लोग रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन भगवान का आविर्भाव हुआ था। स्वाति नक्षत्र में भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था। पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो ऐसे ही जितने अलग अलग नक्षत्र हैं, इनका एक अपना प्रभाव है और उसी के आधार पे ही उनका प्राकट्य होता है। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं एक बार, ये देखिए यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र मैंने बताया है। तो जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये भी अपना बहुत कार्य करता है। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आप कोई दवा पीते हैं या कोई दवा बनाते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र बहुत उत्तम माना गया है। पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसमें कौन से अशुभ नक्षत्र है, ये जनरल है, लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं हर नक्षत्र एकदम ही बुरे होते हैं, लेकिन ये मैं अभी फिलहाल आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूं। तो जनरल में आप देखिए, सबसे पहला जो है ये पहली लाइन, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो पहला लाइन है और जो ये आखिरी लाइन है, ये दो लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अश्विन, मघा, मूल, ये इनके ग्रह के स्वामी कौन है? केतु। यानी हर ग्रह का अपना एक स्वामी होता है। और वैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध नक्षत्र है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के और नीचे के जो तीन तीन नक्षत्र हैं, इसको टोटल 6 नक्षत्र कहते हैं। इसी 6 नक्षत्र को ही मूल नक्षत्र कहते हैं। जब किसी बालक का जन्म अश्विन में, मघा में, मूल में, या अश्लेषा में, ज्येष्ठा में, या रेवती नक्षत्र में जन्म होता है, तो उस बालक का कहते हैं कि 27वें दिन के बाद पूजा कराओ, शांति कराओ, नहीं तो ये बच्चा बहुत क्रोधी होगा, बहुत गुस्से वाला होगा और ये हमेशा दुखी रहेगा, या बहुत जल्दी टेम्पर हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं, वो इन्हीं लोगों के वजह से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो नक्षत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा जो हम लोग पाचक बोलते हैं, पाचक है ना, आप लोगों ने बहुत बार सुनते हैं पाचक लगा है, पंचक लगा है, या पंचक में मृत्यु हुई है कल अंतिम संस्कार में, हमें बताया था मैंने शायद, या भूल गया था मुझे पता नहीं। तो ये जो पाचक हम लोग जो बोलते हैं, ये पाचक क्या है वास्तव में? ये जो आखिरी के जो नक्षत्र कहे जाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए श्रवण, एक सेकंड, धनिष्ठा, शतभीषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ठीक है। तो ये जो 5 नक्षत्र हैं, आप इसको लिख लीजिए, आपको याद रहेगा जीवन भर। मैं इसको अभी हटा देता हूं, लेकिन आप इसको ध्यान से लिख दीजिए, धनिष्ठा, शतभीषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती, ठीक है। ये जो नक्षत्र हैं, इसी को पाचक कहते हैं। अगर इसमें किसी की मृत्यु हो गई, धनिष्ठा से लेकर के रेवती नक्षत्र, और ये लाइन से लगते हैं, जैसे आज अगर धनिष्ठा है तो कल शतभिषा नक्षत्र ही आएगा, परसों पूर्व भाद्रपदा, फिर उत्तर भाद्रपदा, फिर रेवती ही आएगा, और उसके बाद वापस से अश्विन चलेगा, फिर भरणी चलेगा, ये फिक्स है। जैसे हमारे संडे मंडे आते हैं यानी सोमवार मंगलवार, उसी प्रकार का ये 27 नक्षत्र लिखा गया है और ये फिक्स है, ये रहेगा। तो इसलिए इस नक्षत्र के ऊपर मैं इसलिए इतना समय दे रहा हूं आपको कि आपको ये समझ में आ जाए कि इसी नक्षत्र से ही हमारा जीवन चलता है। अगर पाचक में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसका दोष लगता है, और अगर उसका शांति यदि नहीं कराया जाता तो घर में और भी लोगों की जल्द से जल्द मृत्यु होने लगती है, यानी वर्ष भर में ही और 3-4 लोगों की या 5 लोगों की मृत्यु फटाफट हो जाती है। इस कारण से इसका शांति कराना आवश्यक होता है। और जब पाचक लगता है तो उसी समय ज्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर आपको विदेश जाना है, या आपको मान लीजिए आप मुंबई में है, दिल्ली जाना है, या दिल्ली से मुंबई आना है, तो ये पाचक जो होता है इसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, खासकर अगर आप कुछ तीर्थ यात्रा जा रहे हैं तो कोई इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई विशेष कार्य के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको ये पाचक जो है ये पालनीय है। अगर आप कोई विशेष कार्य के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने गांव जा रहे हैं और वहां पे कुछ जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो ये पाचक जब लगता है तो अगर आप जाएंगे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, या अगर आप वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन क्यों जाना चाहिए, धाम में यात्रा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन कुछ भक्त लोग जाते हैं वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसमें अगर आपको उस दिन अगर जाना है तो आप पहले नक्षत्र देखिए। अगर पाचक लग गया है या अश्लेषा नक्षत्र है, अभी आप देखिए ये जो अश्लेषा नक्षत्र है ये भी काफी, ये सब जो नक्षत्र हैं ये भी अच्छे नहीं माने गए, तो ये सारे दिनों में भी इनको भी फॉलो करना है। अगर ये नक्षत्र अगर आप देखेंगे कि उस दिन लगा हुआ है, तो उस दिन अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आप कितना भी अच्छा प्लानिंग करके जाओ, मान लो सब सेट है, बस जा करके पेपर पे साइन करना है, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपका सारा काम तहस नहस हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए नक्षत्रों का ध्यान रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये कौन इतना पालन करने वाला है, तो बात यह है कि कभी हमको जीवन में हमने कभी पढ़ा नहीं इस विषय में, इसलिए हमें ये कठिन लग रहा है, लेकिन जब आप कुछ समय इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, तो आप उसमें बहुत सरलता से, बस जैसे आप कैलेंडर देखते हैं बस वैसे ही देखना है, इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको पंचांग बड़ा सा वो पोथी पत्रा लेके खोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले लोग लेकर के ऐसा घूमते थे, और वो सिर्फ अभी तो सिर्फ ब्राह्मण लेके ही घूमते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पंचांग रखते हैं अपने घर में और पंचांग की पूजा करते थे, और उसी पंचांग से उनको मालूम पड़ता था कि कब कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, या हमें क्या करना है। जैसे अभी ये चंद्र ग्रहण लग रहा है तो वो चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, ये सब उनको अपने आप मालूम पड़ता था। कभी कुछ लोग गूगल कर लेते हैं, कुछ लोग किसी से पूछ लेते हैं, बस बात खत्म हो जाता है। तो खैर टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अच्छी बात है, लेकिन ये साथ में हमें इन विषयों के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए नक्षत्र को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और इनके जो स्वामी हैं उसी के आधार पर इनका काम भी होता है। जैसे यदि शुक्र का जो ग्रह है, जैसे हम सेकंड लाइन देखते हैं ऊपर से, तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, जिसमें से इसमें कुछ 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 कार्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन हर कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जैसे ही अगर आप सूर्य वाला राशि देखेंगे तो उत्तर आषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, कृतिका नक्षत्र, ये अच्छा माना जाता है। अगर जैसे बच्चों का नामकरण करना है, अन्न प्राशन संस्कार करना है, या विवाह संस्कार करने हैं, तो ये संस्कार देख करके, ये जो तीसरा लाइन का नंबर है जिसमें सूर्य जिसका स्वामी है, जो आखिरी लाइन में है, आपको एक बार बता दें हम, तो ये जो तीन राशियां हैं, तीन नक्षत्र हैं, इनको ज्यादा कंसीडर किया जाता है, और उसके साथ इसको भी कंसीडर किया जाता है, चंद्रमा को भी, मृगशिरा धनिष्ठा इनको भी कभी कभी कंसीडर किया जाता है, जिसमें से चित्रा को कभी कभी लिया जाता है, धनिष्ठा को बहुत कम लिया जाता है, लेकिन स्वाति को बहुत महत्व दिया जाता है हमारे भक्तों में, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र, तो इनको, और ये उत्तर भाद्रपदा, इसको ये काफी उत्तम माना गया है, ये सारे जो नक्षत्र होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है, आप चाहिए तो इसको लिख सकते हैं, मैं इसको जल्दी नहीं हटाऊंगा, तो अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इस विषय के ऊपर आपको बहुत कम मिलने पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको जो संस्कार बुक दिया है पीडीएफ, वेणु गोविंद प्रभु के माध्यम से, उस संस्कार बुक में आप एकदम लास्ट डायरेक्ट एंड पेज पे चले जाइए, तो जो भी संस्कार कर रहे हैं उसमें देखिए तिथि भी लिखा रहेगा और नक्षत्र भी लिखा रहेगा, तो ये वही जो शुभ नक्षत्र होते हैं उसी के आधार पे वो संस्कार होते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो इन्हीं नक्षत्रों से हमारा जीवन चलता है, हमारा नाम बनता है, हमारा सब कार्य सिद्ध होता है, ठीक है। तो अगले 30 सेकंड में मैं हटाने वाला हूं, अगर आप लिख रहे हैं तो जल्दी लिख लीजिए। और हो सके तो आप ये पूरे नक्षत्रों का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि यदि ये नक्षत्रों का नाम याद रहेगा तो आपका जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा आपको बहुत। और अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ये तो भी उसको ये 27 नक्षत्रों के नाम तो आने ही आने चाहिए। अगर उसे 27 नक्षत्र का नाम नहीं पता है तो क्या एस्ट्रोलॉजर बनेगा वो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो मैंने टेबल आपको दिया है ये बहुत सरल रूप में समझाया गया है इसको। जब आप आगे कभी अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो आपको इसका महत्व समझेगा कि कितना आसानी से मैंने आपको ये दिया है, जो इसको समझने के लिए बहुत समय लग जाता है, बहुत वर्ष लग जाते हैं कि कौन किसका स्वामी है, बहुत कष्ट से समझ में आता है। लेकिन ये टेबल बहुत अच्छा मिल गया मुझे जिसमें बहुत आसानी से हमें ये समझाया जा सकता है या हम समझ सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर इसे अभी हटा रहा हूं। ओके, तो ये हमने अभी नक्षत्र के विषय में समझा है। तो 27 नक्षत्र जो होते हैं वो इस प्रकार से हमारे ऊपर प्रभावित होते हैं। अब आ जाइए करण पे। करण जो होता है पंचांग का ये जो चौथा पार्ट है करण, इसका भी अपना एक कार्य होता है। तो करण टोटल कितना होता है 11। तो पहले इसके विषय में पढ़ लेते हैं। एक तिथि में दो करण होते हैं, एक पूर्वार्ध में और एक उत्तरार्ध में। कुल 11 करण होते हैं जिसमें विष्टि करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। अब इसमें से चर करण बोलते हैं, एक चर करण होता है जिसका नाम मैं पढ़ लेता हूं, क्रिस्तुग्न, चतुष्पद, शकुनी तथा नाग, इसको चर करण कहते हैं। और स्थिर करण कहते हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। खैर ये इतना आपको लाभ में इसका इतना बहुत ज्यादा काम नहीं है, पर एक जानकारी के लिए आप इसे लिख सकते हैं, अपने पास मोबाइल में सेव रख सकते हैं कि करण कितने होते हैं। ये आपको मालूम पड़ गया आज, 11 करण होते हैं जिसमें से 4 जो होते हैं वो चर होते हैं। चर मतलब वो बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ जो है ये लोग फिक्स रहते हैं। दिन में ये लोग का काम जल्दी जल्दी नहीं बदलते, ये अगर लग जाते हैं तो दिन का ऑलमोस्ट हाफ डे ये लोग बहुत अच्छे से बिताते हैं। तो वो पंचांग में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये करण का काम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। योग, ठीक है, ये योग जो है इसका हम लोग आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अरे उनका विवाह का योग आ गया है या उसका कुछ अच्छा योग है क्या, मेरे जीवन में कुछ महापुरुष योग है क्या, क्या मैं कुछ राजा बन सकता हूँ, क्या मैं बहुत बड़ा लेक्चरर बन सकता हूँ, बहुत बड़ा कथावाचक बन सकता हूँ क्या। तो ऐसा योग के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, तो या विवाह का योग क्या है, विवाह का मुहूर्त क्या है। तो ये योग का जो नाम है ये योग का भी 27 योग है, ये टोटल 27 योग होते हैं। इस योग को योग क्या है, सूर्य चंद्र के विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहते हैं। अब देखिए सूर्य कितना दूर है और चंद्रमा उससे भी बहुत दूर है, तो ये दोनों की जो दूरी होती है वो दूरी को योग कहते हैं। और चंद्रमा क्या करता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, बहुत फास्ट गति से घूमता है चंद्रमा, और सूर्य जो होता है बहुत धीमी गति से घूमता रहता है। तो ये जो योग है इनके जैसे नाम है इनका कार्य भी वैसा होता है, ठीक है। ये जैसा कार्य इनका जैसा नाम अगर आप पढ़ेंगे, जैसे विश्व कुंभ है तो यानी ये बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रीति मतलब प्रेम का दिन है वो। आयुष्मान, यदि उस दिन आप किसी का नामकरण करेंगे तो उसको बहुत आरोग्य मिलेगा। यदि आपको कोई अच्छा विवाह का दिन देखना है तो सौभाग्य वाला योग को देख करके विवाह कराइए। शोभन अच्छा दिन है, लेकिन अति गंड जब लगेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता। सुकर्मा मतलब बहुत अच्छा दिन है, अच्छा कोई काम करना है, किसी को दान देना है, कुछ देना है, तो वो सुकर्मा कहा गया है। घृति, शूल, गंड ये सब खराब माने गए हैं। वृद्धि यानी उससे वृद्धि होगी। अगर आप जैसे कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो योग देख लीजिए कि आज का योग क्या है या कौन से तारीख में ये योग आ रहा है, वृद्धि योग। तो वृद्धि योग में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो उससे आपको फटाफट वृद्धि मिलेगी। इसलिए बोलते हैं ना, अरे उस दिन जो उन्होंने ओपनिंग कराया बहुत हमसे तब से वृद्धि हो रहा है, तो इसी कारण से होता है, कोई चमत्कार नहीं है, ये सब हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। ध्रुव, अगर आप कोई पुण्य कार्य करना चाहते हैं कि बस इसको फ्रीज हो जाएगी, या कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो ध्रुव योग में अगर आप करते हैं तो मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। फिर व्याघात, किसी को यदि मारना हो और लड़ाई करना हो तो व्याघात भी एक अच्छा योग माना गया है। और साथ में जो हम लोग नक्षत्र पढ़ रहे थे, जैसे अश्लेषा नक्षत्र होता है, वो भी राजाओं के लिए पहले के लिए बहुत अच्छा होता था। जब वो लोग युद्ध करने जाते थे तो उसके लिए भी मुहूर्त निकालते थे, तो जिसमें से ये लोग जा करके युद्ध करते थे, उनका अश्लेषा नक्षत्र बहुत फेवरेट होता था राजाओं का। ठीक है, तो हमारे शास्त्र में सब कुछ है। अगर किसी को चोरी भी करना है तो कौन से युग में जाके चोरी करेगा तो उसको चोरी हो जाएगा, वो चोरी कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसे भी है हमारे शास्त्र में, ऐसा नहीं सिर्फ अच्छा, हर चीज है, अच्छा बुरा आप जिसको जिस एंगल से लेंगे उस एंगल से आपको लाभ और हानि दोनों पहुंचाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद में हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परीद, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैद्रिति। ठीक है, तो इस प्रकार ये योग जो है इनका अपना अपना कार्य है, और ये जैसा नाम है इनका वैसा इनका कार्य भी है। तो आप इसके ऊपर अच्छे से गूगल में भी आप जानकारी ले सकते हैं, बहुत आसानी से आपको सरलता से इसके बारे में पूरा डिटेलिंग अच्छे से आपको नॉलेज मिल जाएगा। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मैंने जितने भी पंचांग के विषय में बताया है, आप लोग सभी इसको गूगल में भी सर्च करके अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो बार आपको बहुत कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनके विषय में हमने चर्चा कर ली आज। और इस विषय पर जब हम यदि पूर्ण रूप से समझ पाएंगे तो हमें समझ में आता है कि हम लोग जो पंचांग को फॉलो करते हैं वो पंचांग और ये पंचांग में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये पंचांग को हमने समराइज किया है फिर से, तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इनके आधार पे ही हमारा ये टोटल पंचांग चलता है। अब लोगों के मन में प्रश्न आ गया होगा कि अभी ठीक है, पर हमें ये बता दीजिए कि हम कहां से कैसे इसको चेक करेंगे कि हमें ये देख सकते हैं हम इसको। तो यहां पर ये कैलेंडर है, इसका जो आप गूगल में डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो इस प्रकार का साइन दिखेगा जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं। तो इस हिंदू कैलेंडर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो सेकंड वाला पेज है वो मैंने साथ में स्क्रीनशॉट के साथ डाला है, और उसमें आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी जो बीच वाला पेज है उसमें टॉप पे जो लिखा हुआ है, देखिए पंचांग लिखा हुआ है ना, पंचांग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप। और यहां पर पंचांग है, और पंचांग के बाद में देखिए जो मैंने बताया ना आज आपको कि आज कौन सा तिथि है, वार है, नक्षत्र है, तो देख लीजिए आप सभी पढ़ सकते हैं एक बार। आज का तिथि क्या है, तृतीया, पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, कौन सा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, कौन सा योग है, तो शिव योग है, अच्छा योग माना जाता है, और दूसरा योग कौन सा चल रहा है अभी इस समय, सिद्धि योग चल रहा है, और कौन सा करण है, विष्टि है, तो ये सारे, और करण में दूसरा करण भी आता है वो भी है भाव करण है। आज का वार क्या है, वो है रविवार। तो ये टोटल जो पंचांग के विषय में मैं समझा रहा था, आप बहुत आसानी से इसमें खोल के चेक कर सकते हैं, आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हमको नहीं समझ में आया है, हम कौन से पंडित जी के पास जाके सीखे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सरलता से इसको सीख करके रोज अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी इसके अलावा भी जो ऋतुए हैं, जैसे अभी आप इस पेज में आगे आपको नीचे में इसमें लिखा हुआ है, देखिए जैसे चंद्र राशि है, आज का जो राशि चल रहा है वो कौन सा है, धनु राशि में है। सूर्य राशि क्या है, मेष है। ऋतु कौन सा है, वसंत ऋतु चल रहा है अभी भी। और कौन सा आयन है, उत्तरायण चल रहा है। आज जो ये वर्ष का नाम है, ये वर्ष का नाम क्या है, इसे कहते हैं शार्वरी संवत्सर, ठीक है। उसके आगे जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसको प्रमादी कहते हैं, यानी हर साल का अपना एक नाम होता है। तो इस प्रकार आपको ये जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के नाम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देने की आवश्यकता है, बहुत आसानी से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। चाहे वो आपका आईफोन हो, एंड्रॉयड फोन हो, दोनों फोन में बहुत आसानी से चलता है। अच्छा, एक इसमें विशेष बात और है, अभी बता देता हूं ताकि बाद में किसी को चिंता ना हो। इसके जो मैं यहाँ पे पंचांग दिखा रहा हूँ, इसके साइड में मैं इसे बता रहा हूँ ये कि ये जो टाइमिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आप समय देख रहे होंगे, ये जो समय है यहाँ पर, ये समय एंड टाइमिंग है। तो देखिए इसमें कहीं 28 बज के लिखा है, कहीं 6 बज के 21 मिनट लिखा है, कहीं 19 बज के 13 मिनट लिखा हुआ है। तो ये जो समय है ये एंड टाइमिंग है, यानी अभी ये जैसे तृतीया नक्षत्र जो है वो आज कितने बजे खत्म हो गया, सुबह 8:03 पे खत्म हो गया अभी। यानी कौन सा चल रहा है, चतुर्थी चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो समय है, ये समय को भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आपको तिथि वार नक्षत्र मैंने समझा। एक विशेष बात और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जो ये तिथि होती है, ये तिथि कैसे बनती है, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। तो चंद्रमा को पूरा एक पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए केवल 24 घंटे लगते हैं। तो जब चंद्रमा कभी कभी अपने तिथि को पूरा कर लेता है, या हम लोग ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा जो होता है वो अपने एक एक राशि पर 2 दिन के अंदर, कभी कभी 1.5 दिन के अंदर ही राशि चेंज कर देता है, और सूर्य और जो पृथ्वी है हमारी वो अपने एक अक्ष को पूरा कंप्लीट करने के लिए 24 घंटा लगा देती है। तो चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ये दोनों अपने स्थान पर जो घूमते रहते हैं तो उसके आधार पे दिन तिथि बदल जाती है। लेकिन तिथि कब बदला, कब उसको माना जाता है तिथि, जब सूर्य उदय होता है उसी समय जो तिथि लगती है उसी को दिन का तिथि माना जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, सूर्य जब उदय होता है जो तिथि लगी हुई है, और सूर्य जिस समय उदय हो रहा है, जो तिथि अभी लगी हुई है, मान लीजिए पंचमी चल रही है, षष्ठी चल रही है, अष्टमी नवमी चल रही है, तो मान लीजिए अभी अष्टमी चल रही है लेकिन अभी सूर्य उदय हो गया और तब तक उसके पहले नवमी लग गया, तो जैसे सूर्य उदय हुआ और नवमी लग गया तो आज को उसको दिन का तिथि नवमी माना जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपके यहां सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है, ठीक है, और दूसरे दिन फिर सुबह 6:01 पे सूर्योदय होने वाला है। इतना ध्यान से समझिए, पहले आज सूर्य 6 बजे उदय होगा, कल सूर्य 6:01 पे उदय होगा। मान लीजिए आज की तिथि है दशमी, अभी दशमी चल रही है, लेकिन कल सुबह 6 बजे दशमी तिथि रात को 11-12 बजे खत्म हो गई। अभी ध्यान से समझिए, आज मान लीजिए दशमी तिथि है, आज रात को 11-12 बजे या 8 बजे या 5 बजे दोपहर में शाम में दशमी तिथि खत्म हो गई और एकादशी तिथि लग गई। तो कल जब सूर्य उदय होगा तो हमारा जो तिथि एकादशी वो तो रात से लग गया है, लेकिन आज हम उसको एकादशी नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे, जब ये जो तिथि है, ये मान लीजिए इसका तिथि का स्टार्टिंग कितने बजे हुआ, शाम को 5 बजे। अब तिथि का टाइम अपने हिसाब से रहता है, कभी कभी तिथि 30-30 घंटे की होती है, कहीं कहीं 31 घंटे का भी आता है तिथि। एक तिथि हम लोग कहते हैं ना 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन जो तिथि होता है वो कभी कभी 30 घंटा 31 31 आवर्स के भी होते हैं। तो मान लीजिए 5 बजे तिथि उदय हुआ है, एकादशी लग गया है, और जैसे ही सूर्य उदय होगा और सुबह वो एकादशी तिथि रहेगी, तो आज जैसे सूर्य उदय हुआ सुबह 6 बजे, यानी कल सुबह 6 बजे जैसे सूर्य उदय होगा, तो वो स्टैंप लग जाएगा कि आज का एकादशी माना जाएगा। ठीक है, अब वो भले एकादशी भले दोपहर में ही खत्म हो जाए, या जैसे सूर्य उदय हुआ 6 बजे और 7 बजे एकादशी खत्म हो गया, तो हम क्या कहेंगे, आज एकादशी है, आज द्वादशी नहीं है। वैसे ही जब द्वादशी कब लगेगी, भले ही 7 बजे के बाद द्वादशी लग गई, लेकिन कल दूसरे दिन जब 6:01 पे जब सूर्य उदय होगा, तो जैसे द्वादशी 6:02 पे भी यदि खत्म हो गए तो चलेगा, लेकिन जैसे द्वादशी 6:01 पे जब सूर्य उदय हुआ है और उस तिथि में उस समय चल रहा है, तो उसे दिन का द्वादशी तिथि माना जाएगा। अब इसको आप समझ लीजिए, यदि नहीं समझा तो फिर बाद में प्रश्न कर लेना, फिर समझा दूंगा। ओवरऑल बात ऐसा है कि सूर्य जिस तिथि पर उदय होता है, यानी अभी तिथि चाहे कोई भी सवेरे चल रही हो, वही दिन का तिथि माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तिथि जो है चंद्रमा के ऊपर आधारित है, हमारे पृथ्वी के घूमने के ऊपर आधारित है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है तिथि का क्षय हो जाता है। तिथि का क्षय कैसे होता है, जैसे अभी मान लीजिए सूर्योदय के बाद में, अभी आज नवमी चल रहा था, जब सूर्योदय हुआ तो नवमी लग गया तिथि, लेकिन नवमी जो तिथि थी वो मान लीजिए सुबह 8:10 वो नवमी तिथि खत्म हो गई और दशमी तिथि लग गई, लेकिन दशमी तिथि लगी और दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले दशमी तिथि खत्म हो गई, माने 6:02 पे यदि सूर्य उदय होने वाला है तो वो 5:50 पे वो तिथि खत्म हो गई, दशमी तिथि खत्म हो गई, अब डायरेक्ट एकादशी लग गया है, तो उसको क्षय तिथि माना जाता है। तो इसलिए कभी कभी तिथि का क्षय माना जाता है, और तिथि का वृद्धि भी क्या कहते हैं, यानी सूर्य जैसे मान लीजिए दशमी जो तिथि है वो 6:01 पे जब सूर्य उदय हुआ तब लग गई थी, उसके पहले ही यानी 2-5 मिनट पहले, यानी 5:50 पर दशमी तिथि लग गई और सूर्य 6 बजे उदय हो गया, और कल सूर्य 6:01 पे उदय होगा, लेकिन दशमी तिथि सुबह खत्म होगी कब, जब सुबह 6:30 8:09 भी मान लो खत्म होती है, तो 2 दिन दशमी माना जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी साल में, ऐसा होता है, रेयर भी होता है बट होता है। तो इसलिए अभी जैसे आप लोग अभी लास्ट एकादशी में लोगों में प्रश्न आ गया था कि एकादशी आज है या कल है, बहुत भक्त कंफ्यूज थे, तो उसके लिए हमने उत्तर बताया था कि वो अमावस्या के हिसाब से 2 दिन अमावस्या लग रही थी, उसके आधार पे जो उसका द्वादशी था वो उस दिन दूसरे दिन माना जा रहा था, इसलिए उसके एक दिन पहले को एकादशी माना गया। तो ऐसा उसका हमने बताया था, तो आप लोगों ने शायद ऑडियो सुना होगा। तो इस आधार पे ये अलग अलग ये तिथियां चलती हैं, और इसलिए वृद्धि या क्षय होता रहता है, कभी तिथि बढ़ जाती कभी घट जाती, तो हर 3 साल के बाद में ये तिथि को घटते घटते कम होके जो प्रॉपर, यानी पूरे महीने में कुछ एक या पूरे वर्ष में 10 दिन जो होता है वो ऐसे घटता है और बढ़ता है, घटता है और बढ़ता है, ऐसा अपने तिथि के हिसाब से चलता रहता है। तो वो कंप्लीट करने के लिए बाद में 3 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसे बाद में एक पुरुषोत्तम मास लगता है, और वो जो मास आता है 3 साल में एक बार, उसमें सभी वो तिथियों को एडजस्ट कर दिया जाता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी पार्ट में बोला गया है। लेकिन वास्तव में ये जो पुरुषोत्तम मास है ये भगवान की कृपा से मिलता है हमें, कि हमें उस समय केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नौकरी बिजनेस सब 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर के केवल भगवान का भजन करना चाहिए, इसलिए पुरुषोत्तम मास आता है, ये भगवान की कृपा से आता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी पार्ट में ऐसा बोला जाता है कि तिथि वगैरह जो सब माइनस प्लस हुए उसको एडजस्ट करने के लिए इसको पुरुषोत्तम मास आता है, या अधिक मास बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार ये तिथि है, नक्षत्र है, वार है, करण है, योग है, इसके आधार पर मैंने आपको समझाया, और अब आप इस विषय को ध्यान पूर्वक समझ करके अपने जीवन में उतारिए, और आपको भी अभी जब कोई विधि करना होगा, जैसे भगवान राम का जब ये हो रहा था राज्याभिषेक, तो दशरथ महाराज ने सीधा बोल दिया, अरे कल तो पुष्य नक्षत्र है ना, कल भगवान राम का हम लोग राज्याभिषेक कर देते हैं। आप रामायण पढ़िए, वाल्मीकि रामायण, तो उसमें बार बार नक्षत्रों का उच्चारण किया गया है कि भगवान राम जब भी समुद्र का आवाहन करते तो भी बोलते हैं चलो इस नक्षत्र से मैं कर रहा हूँ, देखे उससे हमारा लाभ होगा, ऐसा ऐसा भगवान बोलते हैं वहां पर। तो हर नक्षत्र का अपना एक लाभ है और इसके विषय में आप जितना जानकारी इकट्ठा करेंगे आपके लिए ही लाभदायक है, क्योंकि उसे इतने कम समय में और इस तरीके से समझाना मेरे लिए भी बहुत कठिन है, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कभी प्रयास नहीं किया इस प्रकार समझाना। जो भी मैंने कोशिश किया अपने शक्ति के आधार पर, तो जितना आप समझ सके उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और अंतिम में कुछ और दो बातें बता देता हूँ आपको। बहुत सारे भक्त थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं दिशाओं को लेकर के, तो उनके लिए भी मैंने एक स्लाइड लिखा है और मैं आपको फिर और जो ऋतुएं हैं उनके विषय में भी थोड़ा एक बार बता देता हूँ। तो फिलहाल आप एक देख लेते हैं हम लोग ये। ये देखिए, आपको दिशाएं मालूम होनी चाहिए। ये जो दिशाएं होती हैं इसी के आधार पे हमारा घर होता है, हमारा भोजन होना चाहिए, हमारा सोना होना चाहिए, हमारा उठना बैठना, भोजन करना, भगवान का पूजा करना, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। तो अभी ये पंचांग के साथ ये दिशाओं के विषय में भी थोड़ा बताना था मुझे, अच्छा याद आया मुझे। तो देखिए, जो पूर्व दिशा है वहां से क्लॉक वाइज अगर आप घूमेंगे तो ईशान कोण के पास आकर के ये रुक जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहां ईस्ट से अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऐसे क्लॉक वाइज घूमने के बाद ये डायरेक्ट ईशान कोण पे आता है हमारा। तो ये जहां से सूर्य उदय होता है उसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और उसके बाद में एक दूसरी दिशा होती है जिसको अग्नेय कोण कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है दक्षिण दिशा, इसको यमराज जी का दिशा कहते हैं। फिर आता है नैऋत्य कोण, फिर आता है पश्चिम दिशा, वरुण देव का स्थान है, फिर वायव्य कोण है, फिर उसके बाद में उत्तर दिशा आता है और फिर ईशान कोण आता है, ठीक है। तो ये आठ दिशाएं हमें याद होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। सूर्य जैसे उदय होता है वहां से आप क्लॉक वाइज घुमाएंगे अपने आप को तो आपको सारे दिशाएं मालूम पड़ जाएंगी। तो जिसमें से पूर्व दिशा ईस्ट कहते हैं, अब मान लीजिए आप अपने घर में रहते हैं तो वहां पे अग्नि कोण में, ये जनरल बता रहा हूं, अब आप अपना वास्तु का क्लेरिफिकेशन मत करने लगना, मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूं। यहां पे पूर्व दिशा जो होती है वो बहुत उत्तम माना गया है। जैसे जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं या हम भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं या कथा करते हैं, या अभी भी मैं जो लेक्चर दे रहा हूं वो पूर्व दिशा की ओर मैं अपना मुंह करके बैठ के लेक्चर देता हूं, या कोई भी रीडिंग का काम करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर कीजिए, सूर्य की ओर करके कीजिए, तो उससे आपका लाभ बहुत मिलेगा, आपको पढ़ाई बहुत अच्छा मिलेगा। इवन स्त्रियां जो श्रृंगार करती हैं वे लोग भी यदि पूर्व दिशा की ओर करती हैं तो उनका आयु और आरोग्य बढ़ता है। और उसके अलावा जो अग्नि कोण होता है वहां पर भोजन पकाना चाहिए, अग्नि कोण में टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना चाहिए, दक्षिण में सिर होना चाहिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए एक व्यक्ति के रूप में हैं तो यहां पे आपका सिर होना चाहिए और यहां पर आपका पैर होना चाहिए, आपको ऐसे सोना चाहिए, ठीक है। सिर साउथ में होगा और पैर नॉर्थ में होगा, तो इस प्रकार हमें ऐसे सोना चाहिए। जो लोग नौकरी बिजनेस करते हैं उन लोगों को ऐसे सोना चाहिए, लेकिन यदि कोई कोई ब्रह्मचारी है या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सिर सूर्य यहां रख करके और पैर ऐसे करके सोना चाहिए, ठीक है। पूर्व दिशा में सिर रखना चाहिए, इसमें पैर रखना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे लोग अगर सूर्योदय के पहले उठते हैं तो आप उनका पश्चिम दिशा में सिर रख करके उनको सुला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे लोग सुबह या जो पढ़ाई कर रहा है विशेषकर, तो उसको अपना जो सिर होता है उसे यहां पे रख करके यहां सोना चाहिए और पैर ऐसे करने से, इससे ज्यादा लाभ होता है। लेकिन बात यह है कि अगर वो सूर्योदय से पहले अगर नहीं उठेगा, अगर उसकी आदत है कि वो सूर्योदय के पहले नहीं उठ पाता है, तो उस व्यक्ति को बहुत बीमारी होगी, उसका सिर हमेशा दुखता रहेगा, बहुत माइग्रेन इत्यादि प्रॉब्लम होने लगेंगे उसे। तो इसलिए ये सारे विषयों को आपको अच्छे से जानकारी रखना है, ठीक है। और कभी भी यहां पर सिर रख करके और ऐसे पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है उसका एंगल ऐसा है, ठीक है, ऐसा क्रॉस में है, तो अगर आप यहां पे सिर रखेंगे तो नींद ऐसे आती है हमारे ऊपर। लेकिन अगर आप ऐसे सोएंगे, यहां आपका सिर है, तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आने की वजह से मन में बहुत चिंताएं होती हैं, बहुत परेशानियां होती रहती हैं। तो इसलिए ये दिशाओं को ध्यान से रखिए। ईशान कोण में, जैसे ये जो ईशान कोण है, यहां पर कभी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, यहां पर ही मंदिर होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज बता रहा हूं आपको, विशेषकर मंदिर जो होता है वो इसी स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत धनी बनना है तो उसे नॉर्थ की तरफ अपना मुंह रख करके सोना, अपना दुकान का उसका जो दरवाजा है दुकान का, उसे उत्तर की ओर या पूर्व की ओर करना चाहिए। जैसे कोई मेडिकल वगैरह का कार्य करता है तो उसको पूर्व दिशा की ओर उसका ओपनिंग, उसका दरवाजा का एंट्री होना चाहिए। और यदि कुछ लोगों को पैसा और नाम दोनों चाहिए तो इस स्थान का स्थान पे दरवाजा होना चाहिए, तो जिसको ईशान कोण कहते हैं, उसको लाभ भी मिलेगा, धन ऐश्वर्य भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा। इवन बहुत सारे भक्त लोग हैं जो ऐसे ऐसे घरों में चले जाते हैं, मान लीजिए खासकर वो लोग ऐसे घरों में एंट्री ले लेते हैं, तो इस वजह से ये जो वायव्य कोण है इसमें अगर आप जाएंगे घर लेंगे तो आपका जो घर में जितने भी आप कितना भी पैसा कमाइए बहुत खाली हो जाएगा, उसमें पैसा बचेगा ही, और इसी कारण से हमारे भक्त लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन नॉर्मल सा छोटा सा जनरल नॉलेज लेकर के वो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। अगर ईशान कोण में चले जाएंगे तो अच्छा घर मिल जाएगा उनको। अभी ये ईशान कोण है, यहां पर अगर वो घर लेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उनको अनायास ही जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा मिल रहा है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, और भक्ति भी अच्छे से कर पाते हैं, कोई कष्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए कुछ भक्त हैं जो यहां से अग्नि कोण में अगर उनका घर मिल गया, उनको दरवाजा उनका जो खुलता है वो अग्नि कोण में खुलता है, तो ऐसे घरों में केवल रोग मिलते हैं, और इस घर के जो पुरुष होते हैं वो अधिकतर बीमार होते रहते हैं। इसलिए ये जो अग्नि कोण का दरवाजा है इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ईशान कोण बताता हूं आपको, सबसे अच्छा कहा गया है कि यहां पर आपका दरवाजा होना चाहिए, या यहां ऐसा दरवाजा होना चाहिए, या यहां से भी दरवाजा ओपनिंग होगा तो चलेगा, या यहां पर भी हुआ इट्स ओके, यहां से भी हुआ इट्स ओके। तो ये जो स्थान को मैंने रेड कलर किया है ये अच्छा है, और ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूं, ये जो कलर है यहां पे कभी भी दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे स्थानों पे हमारा दरवाजा होगा तो हमें अननेसेसरी अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं। आप वास्तव में बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कोई कोई लेना देना नहीं, आप बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, अग्निकोण में दरवाजा है तो अननेसेसरी घर के पुरुष जो है बीमार रहेंगे, यहां तक कि उनको कभी कभी बार बार एडमिट करना पड़ेगा, और दक्षिण दिशा में यदि मुंह करके बैठे हैं तो हमेशा आपका लॉस होता रहेगा घर में, और अगर वायव्य कोण में अगर दरवाजा है तो भी घर में बहुत नुकसान माना जाता है। तो खैर ये अभी ये जितना आप समझ सके हो अच्छी बात है, नहीं समझ सके और अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको बाद में भी इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारे जीवन में दिशाओं का बहुत महत्व है और ये दिशाओं को समझना चाहिए। और अंत में मैं कुछ और चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं एक बार। तो हम भक्तों को कम से कम छह ऋतुएं मालूम होनी चाहिए। छह ऋतु कौन कौन सी है, ठंडी गर्मी बरसात ये तो हमें अच्छे से आता है, लेकिन जैसे वसंत शरद ऋतु शिशिर ऋतु इसके विषय में हमें याद नहीं रहता है, तो ये भी अपने समय पे चलता है, वो आप पंचांग में अब देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 12 राशियों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो 12 राशियां होती हैं इन्हीं राशियों से हमारा जीवन चक्र चलता है, इन्हीं राशियों के आधार इन्हीं के अंदर में नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र ये 12 राशियों में कन्वर्ट होते हैं। तो चार राशि के अंदर 9 नक्षत्र होते हैं और वो सब लोग ढाई ढाई करके ऐसे बटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे 12 राशियां हैं और उनके अंदर 27 नक्षत्र होते हैं, और उसके बाद में ये जो चंद्र मास के नाम से हमें, यानी जो हमारा जो महीना चलता है जिसका नाम क्या है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदू जो हमारा मास है महीना है वो हमें कम से कम आना चाहिए, तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 12 नाम है महीने के, अगर जो आप 12 तिलक लगाते हैं ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, तो आप ये जो हमारा दामोदर मास आता है कार्तिक मास के बाद, जो 9 नंबर से अगहन लिखा हुआ है, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप केशवाय केशव मास चलता है। हमारा दामोदर मास कब आता है, जब कार्तिक लगता है, तो उसको हम लोग दामोदर मास यानी एंड वाला नाम बोलते हैं, दामोदराय नमः। तो इसके वैसे ही फिर केशव, पौष को फिर नारायण, फिर माघ को माधव, है ना, इस प्रकार से हमारे नाम है। फाल्गुन को हम लोग बोलते हैं केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंद मास कहते हैं, ऐसे अनेकों अनेकों सबके नाम है। 12 महीनों के 12 हमारे वैष्णव में भी उनके नाम है। तो आप उनको जैसे तिलक लगाते हैं वैसे उनके नाम है, बस वो कार्तिक मास के बाद को एंड कर लीजिए तो दामोदर मास बोलते हैं उसको, तो दामोदर के बाद में फिर से केशवाय नमः स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये राशि वगैरह याद हो जाएगी, तो ये सभी जो राशि है, नक्षत्र है, तिथि योग है, तो आप लोगों ने जब देखा होगा कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तो वहां पर इस प्रकार का ऐसा चार्ट दिखाया जाता है। तो ये जो आप देख रहे होंगे इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये एंटी क्लॉकवाइज लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहां से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आप देखेंगे तो ऐसे करके पूरा 12 राशियों के अपने नाम लिखे गए हैं, ऐसे, है ना। तो ये जैसे अभी हमने बताया ना, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, ये सभी 12 राशियों के आधार पे ही इनके भाव हैं। तो ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पंचांग में ही ये भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें आपको काफी, अगर आप भविष्य में इसको और अच्छे से जानकारी आप लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ जाएगा। ये मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि अगर किसी में भाव जागरूक हो तो कम से कम वो इन विषयों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज है, मैंने कोई आपको विशेष जानकारी नहीं दी है, ये उतना ही जानकारी है जितना आपको समझना चाहिए, या आपको बचपन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, हम लोगों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमारे जो राजकरण है उसमें हमें हमारी संस्कृति से दूर रखा जाता है, और जिस कारण से हमें हमारे जीवन में अनेकों कष्ट लेने पड़ते हैं जिसका वास्तविक कोई अर्थ नहीं है। इसलिए बहुत सरलता से कुछ उपाय करके हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे भक्त भगवान की इसलिए भक्ति में आते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, तो इस कारण से भगवान की भक्ति करते हैं। तो चलो ये नहीं कहने प्रकार है भगवान की भक्ति में आना, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उन कष्टों का निवारण बहुत सरल तरीके से होता है। उसके लिए हमको हरिनाम जप करके उन कष्टों को दूर करने की, भगवान को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली कुछ उपाय करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो आप अच्छे घर में रहिए, दिशा वाले घर में रहिए, आपको राशि, नक्षत्र, दिन, तिथि, वार इत्यादि मालूम होना चाहिए, कब क्या खरीदना है, कब कौन सी विधि करानी है, कब क्या लाना है, कब क्या बेचना है, ये सब भी आपको जानकारी उसके आधार पर मिल जाएगी। और ये कार्य करने से आपका मन शांत रहेगा, आपका जीवन सुखी होगा। और जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने क्या, एक वैष्णव को, एक भक्त को क्या करना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए भक्तों को, और कैसा जीवन जीना चाहिए, भक्ति करने के लिए एक जमीन रख लेनी चाहिए, उपजाऊ जमीन, और एक दुधारू गाय रख लिया, बस हो गया जीवन में, इसी से हम सुखी रह सकते हैं। हमें कोई मेहनत, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस आधार पर ऐसा लगता है कि हम 200-500 साल जिएंगे, तो इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरलता से हम जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा हर भक्त को यही कहता हूं कि आप अपने जीवन को सरल बनाइए, नॉर्मल रहिए, एब नॉर्मल मत रहिए, क्योंकि लोग भक्ति करते करते थोड़े एब नॉर्मल हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत महान भक्त हो गए। भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सरल हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, हमारी आवश्यकताएं कम हो जाए, और हम अधिक से अधिक कृष्ण पे निर्भर रहें। यदि आप 5 साल 10 साल से भक्ति कर रहे हैं और अभी तक आपको ये विश्वास नहीं हुआ है कि कृष्ण पालेंगे नहीं, हमारा ऑफिस का बॉस हमें पालेगा, तो हमारा भक्ति करने का वो हमारा समय बर्बाद ही गया है। क्योंकि हमें अधिक से अधिक जितना हम कृष्ण भक्ति में और कृष्ण पर निर्भर रहेंगे, वही हमारे जीवन की सफलता है, वही हमारे जप की सफलता है, वही हमारे गुरु की कृपा है, वही हमारे भगवान और वैष्णव की कृपा है। इसलिए जीवन को इस तरीके से ढालना चाहिए कि अधिक से अधिक कृष्ण पर निर्भर रहें। हमें ज्यादा ये नौकरी और अन्य लोगों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, हमें भगवान पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। देखिए जो कृषि होता है, एक किसान होता है, वो वर्षा पर निर्भर रहता है। वर्षा कहाँ से होती है? भगवान की कृपा से होती है। वो जो उपज होती है पृथ्वी से, जो रस निकलते हैं जिससे सब्जी फल और अन्न उदय होते हैं, वो कहाँ से उदय होते हैं? ये सब भी भगवान से आते हैं। और जो गाय से दूध मिलता है वो किसकी कृपा से आता है? भगवान से आता है। तो हम वास्तविक जीवन जो पाते हैं वो यही देखते हैं कि जीवन में हम सुखी रह सकते हैं एकमात्र भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से। तो अपने जीवन को ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए, अपने जीवन को इतना सरल और इतना उत्तम मानना बनाना है हमें कि हम जल्द से जल्द भगवान पर निर्भर हो जाएं। हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके बैंक में फिक्स करके उसका ब्याज खा के जीवन जीने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। हमें यह प्लानिंग करना चाहिए कि हम कितना कृष्ण पर निर्भर रहें। बड़े बड़े राजा महाराजा भी क्या करते थे, लास्ट में वो जाकर के जंगल में चले जाते थे और भगवान पर निर्भर रहते थे। तो हम लोग भी राजा बनने का ही इच्छा रखते हैं, इसलिए शास्त्रों में बार बार राजाओं का उदाहरण दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है, और राजा जो बना हुआ है वो क्या करता है, अंत में सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा में लगता है। तो इसी प्रकार हमें भी हमारा उद्देश्य जो है वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करना है। और ये जो मैंने ज्ञान दिया है आज के सत्र में अभी तक, ये केवल इसका एकमात्र मूल उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, वास्तविक अर्थ यही है। लेकिन उसको अच्छे तरीके से हमारे इस कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों ने हमें उदाहरण दिए हैं, हमें कुछ बताए हैं, विधि विधान दिए हैं, बस उसका हमें जानकारी लेना चाहिए। अब बात ऐसी है कि हमें जानकारियां नहीं होती और जिस वजह से हम केवल इग्नोर 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 करना ही हमने सीखा है। लेकिन अब हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, अपने जीवन में जोड़ने से हमारी वृद्धि होती है, छोड़ने से हमारा घटने ही वाला है। तो जो अच्छी चीजें उसे ले लेनी चाहिए, जो बुरी चीजें उन्हें त्याग देनी चाहिए। तो अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करते रहिए और जीवन में कृष्ण के प्रति अपना मन लगा के रखिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए हरिनाम जप करने के लिए और भगवान पे निर्भर रहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ भगवान को और सभी भक्तों के चरणों में विनती करता हूँ कि गत सत्रों में मैंने बहुत सारे अशब्दों का प्रयोग किया होगा, किया ही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और मेरी वाणी भी बहुत कठोर है, कभी कुछ अशब्द बोल चुका हुआ हूंगा, कुछ ऐसा भी कर दिया होगा कि कुछ भक्तों को शायद अंतरात्मा से उन्हें कष्ट पहुंचा होगा। तो मैं वास्तव में हृदय पूर्वक उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि मेरे किसी भी वाणी से यदि किसी भी भक्त को कहीं भी कठिनाई हुई तो मेरा वास्तविक हृदय में तो ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा स्टार्टिंग में डिस्कशन हुआ था इससे पहले कि हम दो क्लास में वाइंड अप कर लेंगे कि फर्स्ट क्लास में आप इम्पोर्टेंस बताइए और सेकंड क्लास में संस्कार के बारे में ओवरव्यू दे दीजिए, बट आपकी कृपा रही, आपने इस मंदिर से इतने सारे सेशंस लिए, 10 सेशंस हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय निकाला, तो मुझे आपने बहुत मेहनत करी, मेरे पता है कि बोलने से पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, भागवत गीता या भागवत का लेक्चर देना होता है तो वो हमारे डे लाइफ में डेली पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा रीड आउट करके लेक्चर दे देते हैं, और जो डिवोटीज उसके लिए भी मेहनत करते हैं, बट ये जो टॉपिक है ये डिफरेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मेरे को पता है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ा, उसके लिए सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद
आपका,
आपने इतना समय निकाला और इतना करा। भक्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी प्रभु जी ऐसा कुछ बोले और हम दोबारा से सुनना चाहेंगे, प्रभु जी को कभी मौका मिलेगा और भगवान की कृपा रही ऐसा समय मिला कोरोना जैसा टाइम जिसमें लॉकडाउन में सब लोग फ्री हैं, बहुत लोगों के लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है लॉकडाउन भजन करने का। अभी कुछ दिन पहले गोपाल कृष्ण महाराज का लेक्चर हो रहा था, लाइव आ रहा था, तो उसने लास्ट में महाराज बोले कि this lockdown is a wonderful opportunity given by Krishna to all the devotees to increase their bhajan. ये सबसे महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए अपना भजन को बढ़ाने का, क्योंकि महाराज बोल रहे थे कि जो प्रीचर्स हैं प्रीचर्स को क्या फायदा है कि वो हमेशा प्रीचिंग में लगे रहते हैं, उनको अपने पर्सनल साधना करने के लिए ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, तो ये टाइम है कि वो अपना पर्सनल साधना कर पा रहे हैं। और जो गृहस्थ हैं वो बेचारे महाराज बोल रहे थे कि जॉब करते हैं, हमेशा भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं जॉब के लिए, तो अब समय मिल रहा है उनको घर में बैठ कर, चाहे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं लेकिन उसमें भी समय मिल रहा है अपने भजन को एनहेंस करने का। तो इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से लाभ उठाया, प्रभु जी आपके माध्यम से हमें सुनने को मिला, उसके लिए बने बने धन्यवाद। और भक्तों की रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी तो हमने ये जूम पर रिकॉर्डिंग करा है, तो जूम पर रिकॉर्डिंग हुआ, हम लोगों ने प्रयास करा कि अच्छा हो, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ एरर्स हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है, कभी आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, कभी मेरे साइड से आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी सभी भक्तों से कि कभी आपको टाइम मिले तो एक एक पर्टिकुलर संस्कार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप प्लीज मेरे को कॉन्टेक्ट करिए, मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आपको हेल्प कर पाएंगे।
तो जी मुझे बस जरा दो मिनट के लिए ब्रेक दीजिए, तब तक आप लोग
सभी से रिक्वेस्ट है कि तब तक अपने हैंड्स रेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी दो मिनट में वापस
वैसे संध्या का अर्थ होता है कि हम जो भी भगवान की उपासना करते हैं और भगवान जिस स्थान पर विराजमान होते हैं उनके सम्मुख यानी उनके सामने अपना मुंह करके बैठना, उसी को वो दिशा उत्तम मानी गई है। जैसे हम लोग गायत्री जब दीक्षा लेते हैं, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि सुबह जब हम जप करते हैं गायत्री तो पूर्व दिशा की ओर करना है, दोपहर में उत्तर दिशा की ओर करनी है, और संध्या के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके गायत्री जप करना चाहिए। लेकिन यदि ये दिशाओं का अभाव में, यदि वहां पर दिशाएं हमें ज्ञात तो हैं लेकिन यदि भगवान हैं, भगवान के विग्रह हैं वहां पर, तो वहां पर जिस दिशा में भगवान का विग्रह है उसी दिशा की ओर भगवान को मुख करके, भगवान की ओर मुख करके हमें संध्या उपासना करनी चाहिए, एक बात है। और दूसरा है उसका समय क्या होता है। सबसे अच्छा समय होता है संध्या काल का ब्रह्म मुहूर्त, यानी जैसे ब्रह्म मुहूर्त भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो सुबह आप 5:30 से, अगर आपके यहाँ 5:30 बजे सूर्य उदय होता है, या कुछ लोगों के यहाँ 5, कुछ लोगों के यहाँ 6 बजे होता है, वैसे सबसे अच्छा क्या, मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, 6 से 8 ये 2 घंटा पकड़िए सुबह में, दोपहर का 12 से 2 ये भी उत्तम माना गया है, और शाम के समय में भी 6 से 8, ये तीन ऐसा है त्रिकाल संध्या करने के लिए जो अच्छा मुहूर्त है, अच्छा समय होता है। इस समय जैसे कि सुबह जब होता है तो सुबह जब सूर्य उदय होने वाला होता है उसके पहले ही वातावरण बहुत शांत और बहुत शुद्ध हो जाता है, इसलिए उस समय का हवा लेना, प्राणायाम करना या उस समय जप करना, हम कोई भी कार्य करते हैं वो सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए सुबह उठ करके जल्द से जल्द हमें साधना करनी चाहिए, विशेषकर कम से कम 6 बजे आपका माला स्टार्ट हो जाना चाहिए, 6 साढ़े 6 तक स्टार्ट हो ही जाना चाहिए। या अगर आप यहाँ सूर्य जो अगर 7 बजे उदय हो रहा है तो कम से कम 5 या 6 बजे के पहले पहले आपका जप शुरू हो जाना चाहिए, यानी उसके पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, उसके पहले सब आपको तैयारी करके फिर जप कर लेना चालू करना है। तो 6 से 8 ये समय है। दोपहर में जब सूर्य एकदम सिर पे होता है तो उस समय भी संध्या करने का विधान बताया गया है। और संध्या के समय गोधूली बेला कहते हैं, गोधूली मतलब जब गायें रिटर्न आती हैं तो उनके आने से बहुत धूल उदय होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अभी तो गाय की धूली नहीं कार की धूली होती है, तो इसलिए अभी जो इसको गोधूली वैसे बेला कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए अभी 6 से 8 जो समय है गोधूली में कन्वर्ट करके हम उसमें संध्या करेंगे तो उसका लाभ हमें पूर्ण रूप से मिलता है। ठीक है, और प्रश्न प्रभु जी?
शाम के समय के लिए बताया,
शाम के समय 6 से 8
के बीच में कर
जी।
प्रभु जी, मांगलिक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मांगलिक क्या होता है?
जी देखिए, राशि में मैं आपको इमेज बता देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। आप लोग कभी भी अगर कुंडली कोई भी एप्लीकेशन में देखेंगे तो आपको समझ जाएगा मांगलिक कौन
है। क्या जो मांगलिक का व्यवहार नॉन मांगलिक से हो सकता है?
हाँ, वो प्रश्न मैं बताता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ मांगलिक कैसे होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसा जो लिखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग कुंडली में भाव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला भाव होता है इसको एक भाव कहते हैं, भाव मतलब उसका स्वभाव होता है, इसको लग्न भी कहते हैं, ऐसे से इनके अपने नाम हैं। ठीक है, अब मंगल, जो मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह जो हम यहां पे लिखते हैं मंगल, वो कहाँ कहाँ रहता है मंगल? पहले नंबर पे 1, 4, 7, 8 और 12, ठीक है, या आप उसको एरो जैसा देख लीजिए, ये ऐसे लाइन में अगर यहां पर कहीं पर भी मंगल होगा तो उसको मांगलिक कहते हैं, एकदम कॉमन है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है। ये राशि में यहां पर कहीं पर भी मंगल बैठा हुआ है तो उसको मांगलिक कहते हैं, लेकिन ये जो विशेषकर मैं यहां पर आपको एक चिन्हित करता हूं, विशेषकर यहां पर ये ज्यादा गहरा मांगलिक कहा जाता है उसे, या अगर ये सातवां ना भी लिया जाए, ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी बताना चालू कर दिया, लेकिन बहुत सिंपल बात है ये कि 1, 4 और 7 में विशेषकर अगर 4 और 7 पकड़ेंगे तो इतना मांगलिक नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर 1 में रहेगा 12 में रहेगा और 8 नंबर में रहेगा तो उसको गहरा मांगलिक कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो 1, 8 और 12 नंबर में जिसका मंगल बैठा हुआ रहता है राशि में, वो व्यक्ति को मांगलिक कहेंगे और उसका विवाह बिना मांगलिक लड़की के नहीं हो सकता, पहला बात है। और जिसका 4 या 7 नंबर में रहता है उसका विवाह अगर नॉन मांगलिक से करेंगे तो भी संभव है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कुंडली में मंगल होते हैं इनका अपना एक प्रभाव होता है। ठीक है, तो मंगल, अब जो कुंडली में जो मांगलिक लड़का है या मांगलिक लड़की है उसका कुंडली देख के मालूम पड़ता है कि कभी कभी लड़की मांगलिक है लड़का नहीं है, या लड़का है तो लड़की नहीं है, तो उसमें ये देखा जाता है उसका प्रभाव कैसा है। कहीं पे मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, अब उसमें भी राशियां हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो उनका दृष्टि किसके ऊपर है, ये सब देखना पड़ता है, तो उस आधार पे ये चीज, लेकिन जो मैंने बताया ये भी कंसिडर होता ही होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है, ये फिक्स है इसका रूल। तो वो जो राशियां हैं, जो 12 नंबर है, 1 नंबर है, 4 नंबर है, 7 नंबर है और 8 नंबर है, इसमें कहीं पर भी यदि मंगल बैठा रहेगा तो उसको मांगलिक बोलते हैं। लेकिन अगर लड़की का मंगल किस भाव में बैठा है, मान लीजिए वो मांगलिक नहीं है, तो भी ये देखा जाता है कि यदि इससे विवाह करेंगे तो इसका प्रभाव जो है इसके ऊपर नहीं लग रहा है ज्यादा, तो उसका विवाह के लिए हाँ बोला जाता है, अन्यथा नहीं बोला जाता। अब कुछ लोग का और प्रश्न है कि मंगल का प्रभाव उससे नुकसान क्या होता है। सिंपल बात यही है, जो लड़का होता है, अगर मान लीजिए लड़के के लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, जो भी मांगलिक है, उनमें क्रोध बहुत रहता है, बहुत भरा हुआ होता है, एरोगेंट होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, अपना ही चलाते हैं, अपना ही सुनते हैं। अब और भी कोई मांगलिक नहीं होता तो उसका एक राशि का एक अलग प्रभाव वो भी होता है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो मांगलिक जिसका होता है वो ये होता है। उसके अलावा उसका अगर भारी मंगल है, यानी मंगल बहुत प्रभावित है, तो अगर सामने वाले का मंगल भी हल्का मंगल नहीं है तो क्या होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है विवाह के तुरंत बाद, यानी एक वर्ष दो वर्ष के अंदर उसका मृत्यु होना ही होना है, फिक्स है। लेकिन यदि मंगल वो मांगलिक का है, सामने वाला मांगलिक नहीं है, एक मांगलिक है, लेकिन उसका मंगल बहुत लो है, बहुत सॉफ्ट है, तो उस व्यक्ति का विवाह हो जाने से भी उसका मृत्यु या कुछ का कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो कुछ लोग इसलिए विवाह के पहले फिर भी मंगल शांति करा देते हैं, जिसका सॉफ्ट मंगल होता है तो भी, लेकिन वास्तव में उसका कोई अर्थ नहीं जो सॉफ्ट मंगल होता है तो। लेकिन यदि हैवी मंगल है तो दोनों का उसमें वो लड़का है या लड़की है तो उसका शांति कराना चाहिए। यदि दोनों है, लड़का लड़की दोनों मांगलिक हैं, तो पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें भी ये देखा जाता है कि कौन सा किस भाव में, अगर सेम सेम है तो फिर उनका पूजा कराना पड़ता है, अगर अलग अलग है तो नहीं कराना पड़ता है, ऐसा वो रूल है एस्ट्रोलॉजी का, वो अलग चर्चा है। लेकिन सिंपल बात यह है कि जो मांगलिक है वो कुंडली देख के ही, उसको समझ के ही डिसीजन दिया जा सकता है कि ये सॉफ्ट है या ये हार्ड है, ठीक है। बट वो जो मैंने आपको घर एरो करके बताया है वो निश्चित है, उससे ही से मांगलिक मालूम पड़ता है, ठीक है।
प्रभु जी, हमारे शास्त्रों में डाइवोर्स को लेकर कहीं पर कुछ है क्या?
डाइवोर्स को लेकर भी, डाइवोर्स को लेकर के हमारे शास्त्र में कहीं नहीं, रिवर्स गियर हमारे यहाँ है ही नहीं। विवाह हो गया तो फिक्स है, एक बार गियर आगे लगाया तो पीछे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे कुछ स्थानों पे ऐसा है कि जब पति जो होता है वो बहुत क्रूर हो जाए, स्त्री का बहुत अपमान करे, तो स्त्री को कहते हैं कि वो अपने पिता के संरक्षण में या पुत्र के संरक्षण में रह सकती है, लेकिन वो भी बहुत रेयर है, ऐसा जल्दी नहीं बोला। इवन रावण सीता को लेकर के आया था तो भी मंदोदरी ये नहीं बोले मैं जा रही हूँ मेरे मायके, ऐसा नहीं बोला, वो रावण के साथ रह रही थी क्योंकि उसको मालूम था मेरा पति ऐसा ही है। तो पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति के साथ रहे, उसको त्यागे नहीं, और पति का कर्तव्य है पत्नी को कभी छोड़े नहीं। विवाह में अगर कोई किसी पति पत्नी को छोड़ता है, मैं उस दिन विवाह संस्कार पे बोल रहा था, एक विशेष स्टेटमेंट देना भूल गया मैं, पता नहीं शायद बोला भी होगा, कि हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म होता है उसी के आधार पे हमें पति या पत्नी मिलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका विवाह किसी ऐसी स्त्री से हुआ है जो भगवान की भक्त नहीं है, आपका बहुत अपमान करती है, परिवार के साथ नहीं रहती है, लेकिन आपका विवाह तो उसके साथ अरेंज मैरिज ही हुआ है, तो आपने क्या किया है, अगर मान लीजिए आपने उसको त्याग दिया, उसको डाइवोर्स दे दिया, तलाक दिया, ऐसा कुछ किया, तो अगला जन्म फिर आपको लेकर के उसी स्त्री के साथ भुगतना पड़ेगा और उतना कर्म आपको दुख लेना पड़ेगा क्योंकि आपने नहीं लिया। तो इसलिए हमको जो कर्म मिला है उसको भुगत लेने से ही हमारे जीवन में शांति आने वाला है, कर्म को छोड़ देने से या कर्म से भागने से हमारे जीवन में कोई सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए जैसा भी पति मिला है या जैसी भी पत्नी मिली है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जीवन में भले सुख दुख हो उसको झेलते रहो, बहुत कष्ट आएंगे उसमें कोई प्रश्न नहीं, लेकिन अंत तो गत्वा। यदि हाँ कोई ऐसा है जो पागल है, मूर्ख है, पागल हो चुका है कि नहीं मुझे छोड़ना ही है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन यदि हमारे बचाने से यदि वो बच सकते हैं तो हमें जितना प्रयास कर सकते कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए उसे, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी है अपने कर्म को भुगतना पड़ेगा और इसलिए कोई नेक्स्ट सेकंड मैरिज करने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे जीवन में कष्ट आ गया है कि हमें कोई सही व्यक्ति नहीं मिला है तो जीवन भगवान के भरोसे रह करके भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अब ये जनरली बता रहा हूँ और ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किसको विवाह करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। बात लेकिन यही हो गया है, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं और ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण उनमें जो समर्पण का जो भाव था वो चला गया है। मैं पढ़ाई के प्रति नहीं, विरोध नहीं मेरा, जो समर्पण की बात है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एजुकेशन होने से क्या हो गया, इसको एजुकेशन तो बोलते नहीं है, फिर भी हम लोग इसको ज्ञान बोलते हैं, लेकिन ये जो एजुकेशन है इसका अर्थ एक्चुअली मॉरेलिटी पर नहीं, इसका जो उद्देश्य है ये बस मैं कमा लूं, मैं खा लूं, मेरा पेट भर जाए, बस मैं अपने जीवन में सुखी रह सकता हूं, ऐसा बता दिया गया उसमें। और इसी आधार पे चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको लगता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं भी रहूंगा तो मेरा जीवन चल जाएगा। लेकिन पहले के समय में स्त्री पुरुष पे और पुरुष स्त्री पे निर्भर हुआ करते थे, वो बिना स्त्री के भी नहीं रहते थे। विवाह यदि हो जाता था तो स्त्री के प्रति वे बहुत आतुर रहते थे। देखिए राम को, देखिए पांडवों को, उनको उनके पास तो पत्नियां भी थी पांडवों के पास एक्स्ट्रा, लेकिन वो फिर भी द्रौपदी के लिए इतना बड़ा महाभारत युद्ध किया उन लोगों ने, जमीन के लिए किया, जो भी किया। ये युद्ध, ये जो सारे कार्य क्या है बताते हैं कि किसी भी प्रकार से स्त्री को त्यागना या स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए, और दूसरा बात है कि स्त्री को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है रामायण से उठा लें कि राम जी ने क्यों छोड़ा है, तो वो अलग केस है, उसका डिटेल हम बाद में चर्चा करेंगे। मूल उद्देश्य यही है, कभी भी छोड़ना नहीं है। यदि छूट भी गए, छोड़ भी दिया है, तो सहन करो, उसी जीवन को वैसे निकाल दो, कष्ट वैसे ही झेल लो, क्योंकि अगला फिर आप नेक्स्ट मैरिज करोगे, उसका कर्म एक्स्ट्रा बांधोगे, तो वो बहुत कठिन हो जाता है जीवन उससे। लेकिन लोग करते हैं ऐसा जीवन में, तो खैर वो उनकी चेतना पे निर्भर करता है, उस पे बस इतना ही है। छोड़ो मत कभी किसी स्त्री या पुरुष को।
मूल क्या होता है, क्योंकि ये बच्चा मूल में पैदा हुआ है तो मूल की शांति कराना कितना अनिवार्य है। और दूसरा प्रश्न कि जैसे जब लोगों का विवाह होता है तो उनका हॉरोस्कोप देखा जाता है, तो उसमें बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि इसके मूल की शांति नहीं हुई है।
हाँ।
तो यदि जन्म के समय किसी के मूल की शांति हुई है तो क्या वो उसकी वजह से हमारे स्टार्स चेंज हो जाते हैं क्या?
स्टार चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मूल का शांति कराना आवश्यक इसलिए माना जाता है कि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिसमें जन्म लेने से उसके उसका प्रभाव, उसका जो मानसिक स्तर होता है वो बहुत क्रोधी होता है। ठीक है, तो वो क्रोधी होने वो बहुत, आप देखोगे शॉर्ट टेम्पर होता है, फटाक से गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि मारपीट, ये उछल कूद, तोड़ फोड़ सब कर लेगा, और तुरंत शांत भी हो जाएगा, दूध के उबाल के जैसा तुरंत शांत भी हो जाएगा। तो ये जो लोग मूल में जन्म लेते हैं, जैसे मेरा भी जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है, तो वो एक प्रभाव होता है उसके मन पे। और ऐसे सब लोग का जिसका भी जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, किसी का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, जिसका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसका भी प्रभाव रहता है। तो ये जो नक्षत्र है इनको दोष युक्त कहा गया है, लेकिन कब तक, जब तक इनकी पूजा नहीं हो जाती तब तक। और जैसे इनकी पूजा हो जाती है तो जैसे जैसे इसकी आयु बढ़ती है उस व्यक्ति की, उसका मन शांत होने लगता है। लेकिन मान लीजिए उसकी शांति नहीं की गई है, तो उसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उसका क्रोध भी उसी स्तर पर बढ़ता जाएगा। तो आप कुछ लोग भक्तों को देखेंगे कि हैं तो बहुत शांत, लेकिन समय आने पर उनका विकराल रूप भी प्रकट हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनका कभी शांति शायद नहीं कराया रहता है, इस कारण से भी ऐसा देखा जाता है। जो भी नरसिंह अवतार प्रकट हो जाता है
ठीक है। क्रोध को लेकर प्रभु जी आया है प्रश्न कि यदि क्रोध हो किसी के अंदर जाता तो हम जो स्टोन्स होते हैं वो पहना सकते हैं क्या?
पहले कुंडली देख लेना चाहिए, स्टोन कभी भी मत पहन लेना बिना जांच पड़ताल, बिना एस्ट्रोलॉजी की, बिना ज्योतिषी के मत के। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट स्टोन पहन लिया और आपको मालूम नहीं कौन सा पहनना है कौन सा नहीं पहनना है, तो आप पे और प्रभावित कर देगा। अभी आपको गुस्सा थोड़ा थोड़ा आता था, अब ऐसा आएगा कि आप तोड़ फोड़ मचाना चालू कर दोगे, तो नौकरी चली जाएगी, पत्नी छोड़ के जाएगी, परिवार से निकाल दिए जाओगे, ऐसा है। सोच समझ के कोई भी, देखिए जानकार व्यक्ति से ये बातें करके चर्चा करके तब वो कार्य करना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैंने जो भी इधर नॉलेज दिया है संस्कार का, आपको जनरल नॉलेज दिया है, ये 100% नहीं है, इसको 100% पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए जो जानकार व्यक्ति उससे प्रश्न करो, वो कहता है हाँ ये करो तो करो, नहीं कहता तो मत करो। अब नहीं करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ कर बैठे उल्टा उल्टा नुकसान हो गया तो फिर आप बोलोगे अरे प्रभु जी ने बोला था ऐसा। तो इसलिए ध्यान से रखिए कि ये जनरल नॉलेज है, पूरा 100% नॉलेज नहीं है, इसको सुनने के लिए आपको बहुत समय लगेगा समझने के लिए भी।
एक बार ने मेरे को मैसेज करा कि वो लिख रहे हैं कि आप भी इस कैटेगरी में हो।
हम भी, हाँ सच कहते हैं तो हम भी अभी सीख रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत कमियां हैं। मुझे तो लगता है कि अभी मुझे बहुत सीखना है और मैं सीखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अभी तक ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपनी सच बात बता रहा हूँ, मैं कोई हम्बलनेस की बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में लगता है मुझे कुछ नहीं आता है।
जो जो कमेंट मेरे लिए था, आपके लिए नहीं था कि मुझे बहुत क्रोध आता है।
फिर भी मैं मेरी भी बात कर लिया इसी में। चलेगा
प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे भगवान का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का, यदि कोई चाहते थे कि मेरे पुत्र या पुत्री का भी जन्म उस नक्षत्र में हो, हाँ, तो क्या ऐसा हम कैलकुलेट करके गर्भोत्थान कर सकते हैं क्या? क्या वो डिसाइड हो सकता है क्या?
देखो, अगर आप वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तपस्या करो, दिव्य तपस्या, कठोर तपस्या। मनुष्य रूपा का जब आप पढ़ेंगे उनका इतिहास में, शास्त्रों में, तो उन लोगों ने बहुत कठोर तपस्या की थी। वायु पी करके, फिर वायु भी पीना बंद कर दिया था उन लोगों ने, हवा भी नहीं पीते थे, ऐसा तपस्या कर रहे थे, तब जाकर के उनको भगवान मिले थे। तो भगवान को लेना इतना आसान नहीं है। यदि आप भगवान के केवल भक्तों को भी प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई भगवान का शुद्ध भक्त भी हमारे घर पे प्रकट हो, तो उसके लिए भी आपको जीवन में बहुत तपस्या करनी चाहिए। आपका आचरण, आपका जीवन बहुत सरल और कृष्ण पे निर्भर रहना चाहिए। जब ऐसी स्थिति होगी, जॉब पे नहीं, पैसों पे नहीं, केवल भगवान पे निर्भर रहने की जो हमारी इच्छा रहेगी। देखिए, आप कमाइए पैसा, नौकरी करना बुरा नहीं है, बिजनेस करना बुरा नहीं है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, उसके बिना घर गृहस्थी नहीं चलेगी। लेकिन जो भगवान पे वास्तविक रूप से निर्भर है, उसको पता है मैं अगर चाहे कुछ करूं या नहीं करूं, भगवान मुझे पाल लेंगे, ऐसी मनोदशा है जिसकी, वो व्यक्ति को भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। और ये बहुत रेयरली ऐसा होता है कि भगवान किसी का सब कुछ छीन लेते हैं। 99% भगवान सबको देते ही हैं, किसी का निकल लेते नहीं, बहुत कम लेते हैं किसी का, 99% दे देते हैं। कोई महान शुद्ध भक्त होता है, उसको उससे खींच लेते हैं भगवान। तो जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमको दे ही रहे हैं, हमारे जीवन में प्रगति हुआ है, घटा नहीं है, तो इसका मतलब है हम लोग वो शुद्ध कैटेगरी के नहीं है। ठीक है,
एक प्रश्न और है कि जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, हाँ, उनका स्टडीज में भी दिमाग लगे और भक्ति भी वो करें, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ बेसिक चीजें आप बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं वो? जैसे कहीं पे बताया जाता है कि बच्चे, अगर बच्चों को तांबे के जल पर आ जाए, तांबे के जल का, तो उनसे उससे उनकी बुद्धि शार्प होती है, उनका जो स्टमक वगैरह वो ठीक रहता है, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों के लिए?
हाँ, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ। अगर आपका बच्चा सूर्योदय होने से पहले उठता नहीं है, अब वो जीवन में कभी प्रगति नहीं करेगा, जीवन में कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसको मत बोलो स्कूल का बुक खोल करके पढ़ो, कभी नहीं बोलने का। ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए नहीं बनाया है रट्टा मारने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त बना है उपासना करने के लिए। तो जब बच्चा गायत्री जप करेगा, इसलिए उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो गायत्री जप करेगा तो उसका बुद्धि में जो क्रिएशन की भावना है, डेवलपमेंट करने की भावना है, वो जागरूक होगी। और वो जागरूक होगी तो कोई भी विषय को बहुत आसानी से पढ़ लेगा, बहुत आसानी से समझ लेगा। लेकिन बात ऐसा है कि हमारे यहाँ बच्चों को कब उठाया जाता है, स्कूल है तो उनको जल्दी उठाया जाता है, बस स्कूल से एक घंटा या आधे घंटे पहले उनको उठा दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। जब बच्चा जब सुबह उठता है ना, तो उसका मन शांत होना चाहिए, उसे पहले हाथ देख करके बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे या जो भी है आप उच्चारण कर सकते हैं इस प्रकार के मंत्र। पहले अपने हाथ को देखना चाहिए, फिर पृथ्वी को क्षमा मांगनी चाहिए। एक अच्छा उस पर क्लास मैंने दिया था एक बार कि कैसे बच्चों को हम लोग ट्रेंड करें, तो खैर मैं बेसिक बेसिक बात बताता हूँ। तो जैसे जमीन पे पैर रखते हैं तो सवेरे बिस्तर से उठने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में, ऐसी प्रार्थना करके फिर जमीन पे पैर रखना चाहिए, तो उनको जमीन को माँ को समझ पाएंगे। जब सबको समझ पाएंगे तब उनको हर विषय भी आसानी से समझेगा, पहला चीज। दूसरा है बच्चों को सवेरे उठा करके उनको स्नान कराना चाहिए, स्नान करके उनको शुद्ध वस्त्र पहनाने की आदत बनानी चाहिए, उनको तिलक लगाने की आदत लगानी चाहिए। और उसके बाद में उनको जैसे अगर जो बच्चा बहुत चंचल है तो आप उसको चांदी के ग्लास में रात को पानी भर के रखिए, और सुबह जब वो सो के उठता है तो सबसे पहला उसको वही पानी पिलाइए, चांदी के ग्लास का पानी पिलाइए। उससे उसका मन बहुत जल्दी जल्दी शांत होने लगेगा। बहुत कितना भी आतंक मचाता हो आप देखोगे महीने दो महीने में शांत हो जाएगा बहुत जल्दी। और जो बच्चे जिनका पढ़ाई में बहुत कम मन लग पाता है या कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वे सूर्य को अर्घ दे, सूर्य को जल दे। या जो बच्चों का बार बार हेल्थ खराब होता है वो भी सूर्य को जल दे। सूर्य को जल देने का भी एक अपना विधि है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए आपको बहुत सारे उस पर वीडियोज मिल जाएंगे। तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसमें चंदन अक्षत इत्यादि मिला करके सूर्य के आगे धीरे धीरे जल की धारा गिरानी चाहिए और सूर्य का मंत्र होता है वो बच्चों को याद करा देना चाहिए। तो इस प्रकार ये देने से उनकी वृद्धि होती है, बुद्धि की शक्ति क्षमता बढ़ने लगती है। तो ये ऐसे कुछ टिप्स हैं जो ये फॉलो करने से बच्चों में काफी वृद्धि होने लगती है और बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और साथ में सूर्य नमस्कार ये सब भी कराना चाहिए, फिजिकल भी, ये भी है, ठीक है।
जी जी, तो ये प्रभु जी ये छोटे बच्चों के लिए है या हम जैसे बड़े बच्चे भी कर सकते हैं अगर हमें क्रोध आता है तो?
हाँ, जो बड़े लोग हैं
लोग भी चांदी के उसमें पी सकते हैं।
हाँ, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सूर्य को अर्घ देना ये सब करना ये मामूली बात है, कोई बड़ा चीज नहीं, ये हर व्यक्ति कर सकता है और जब चाहे तब कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है जो जैसे अभी जिनकी आयु 25 वर्ष से ऊपर चली गई है और उनका भी मन बहुत अशांत रहता है, क्रोधी रहता है, तो उन लोगों को चंद्रमा की छाया में जाकर टहलना चाहिए, रात को टेरेस पे या ऐसे स्थान पे चले जाइए जहां पे चंद्रमा की छाया गिरे शुक्ल पक्ष में। तो चंद्रमा की जब छाया सिर पे गिरती है तो उससे आइडियाज भी अच्छे आते हैं और डिसीजन लेने में आसानी होता है। तो उनको भी चंद्रमा या चांदी के बर्तन में खाना चाहिए। देखिए आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, किस बर्तन में भोजन लेना चाहिए, सबसे पहला है सोने में, फिर चांदी में, चांदी नहीं है तो कांस्य, ठीक है, कांस्य के बर्तन में भोजन लेना चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो आज के समय स्टील जो है ये भी ठीक ठाक है, चलेगा, उसमें रिएक्शन नहीं होता है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, तो स्टील भी चलेगा। और अंत में पत्तल, वो भी पत्ते वाला पत्तल, ठीक है। इसमें अगर आप भोजन करते हैं तो आपका जो बुद्धि का विकास है वो अच्छा चलता रहेगा। अब जो हम लोग आजकल जो फैशनेबल लोग हैं वो लोग किसमें भोजन लेते हैं पता है? सबसे पहले वो लोग लेते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन में जो हड्डियों से बनता है, प्लास्टिक में लेते हैं जो सबसे बड़ा कचरा है, उसमें खाने से जहर लगता है जिससे कैंसर होता है। उसके अलावा फॉइल में बांधा हुआ, प्लास्टिक में बांधा हुआ, पैकेट में बांधा हुआ जो भोजन करते हैं उससे हेल्थ केवल खराब होने वाला है। तो जो लोग, जो बच्चे या जो बड़े लोग इसमें भोजन करते हैं उनका बुद्धि नष्ट होगा, उनका आयु क्षीण होगा और बीमारियां तो लगनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए किस पात्र में ले रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चांदी के पात्र में अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा, मैं कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति 40-50 हजार रुपए महीना कमा रहा है तो व्यक्ति अपने घर में 4-5 थाली रख ले चांदी के, हर महीना भी अगर एक चांदी का थाली खरीदेगा जमा कर करके तो 10-10 हजार रुपए का एक थाली खरीद ले और जीवन भर उस चांदी के बर्तन में खाए, देखिए उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। ये वो कचरो जो इसमें आप लोग खाते हैं चीनी की मिट्टी या कांच के ग्लास में पानी पीना सबसे अशुभ है। जो व्यक्ति कांच के ग्लास में पानी पीता है उसको राहु पकड़ता है, राहु यानी क्या, तो उसका माइंड है ना इसे कंट्रोल करता है, वो पागल होता है, वो व्यक्ति अनाप शनाप बोलेगा, अनाप शनाप कार्य करेगा, जो नहीं करना चाहिए वही काम करेगा। तो इसलिए कांच का ग्लास में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, उसे राहु पकड़ता है, उसमें उसके घर में गरीबी आएगी, उसका धन हमेशा नष्ट होगा, नुकसान ही नुकसान है उसके जीवन में, इसलिए ये सबको तो उठा। और एल्यूमिनियम हमारे भक्त लोग भी आजकल चालू करके रखे हैं, जब महाप्रसाद या बड़ा कुकिंग या फेस्टिवल कुछ मनाना होता है तो एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर के आते हैं और उसमें कुकिंग करते हैं, उससे आयु तो छीण होती है। आपको पता है जो जेल होता है वहां पे एल्यूमिनियम का प्लेट दिया जाता है क्योंकि कैदी लोगों को उसमें खिलाने से उनकी आयु कम हो जाए इसके लिए। तो इसलिए ये एल्यूमिनियम का बर्तन बंद होना चाहिए, घर में उठा के फेंक दो सीधा उसको, उसको रखना ही घर में पाप है, ठीक है।
अब प्रभु जी सारी माताएं बात करेंगी, प्रभु जी लोगों से, प्रभु जी लोगों को नए नए बर्तन लाके देने पड़ेंगे। एक कमेंट और प्रभु जी की, जब आपने विवाह विवाह संस्कार का सेकंड पार्ट दिया था तो उसमें एक कुछ भक्तों का मेरे पास कमेंट आया कि माता जी लोगों का थैंक यू, प्रभु जी ने लास्ट में कमेंट दिया कि अब मैं सभी माताओं के लिए एक बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ कि अब सभी की जो पति है उनको बार बार माताओं के लिए गहने लेकर कुछ ना कुछ आभूषण लेकर आना चाहिए। तो सारी माता जी लोग प्रभु जी से मांग रहे हैं, प्रभु जी का मेरे पास व्हाट्सएप आया है कि प्रभु जी ने हमें फंसा दिया।
अरे यही तो प्रेम बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, अपनी पत्नी को संतुष्ट रखना चाहिए और पत्नी को अच्छा रिलेशन। देखिए आपके बच्चे हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, उनको साइड में रखो, आपका जीवन उसके साथ चलने वाला है और वही आपकी अर्धांगी है। वो अगर प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी प्रसन्न होगी, लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो सरस्वती प्रसन्न होगी, लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो हमारे जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए पत्नियों को आप यथाशक्ति उनको प्रसन्न कीजिए, ठीक है, गहने बनाने की बात अलग है लेकिन यथा योग्य आप उनको संतुष्ट कीजिए, ठीक है। उनको, स्त्रियों को, विशेषकर स्त्रियों को सरप्राइज बहुत पसंद आता है। हमारे जो पुरुष लोग होते हैं वो उल्टा ही सरप्राइज देते हैं, वो सरप्राइज मतलब उसको डरा देते हैं, एक्चुअली उनको सरप्राइज। हाँ हाँ, इस जो पुरुष होते हैं उनको सरप्राइज देना चाहिए स्त्रियों को, कुछ अच्छी अच्छी चीजों को दे करके, जैसे कुछ गिफ्ट ला करके, साड़ी लाया, कभी कुछ उनके लिए भोजन लाया, या उनके लिए घर में किचन में कभी जाकर कुकिंग कर लिया, या कभी उनके लिए सेवा कर लिया। तो इस प्रकार से स्त्रियों को संतुष्ट करने से वे प्रसन्न होती हैं, और वे प्रसन्न होती हैं तो हमारे जीवन में अपने आप सुख प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने स्त्रियों को हमें साथ में दिया है, ठीक है।
चार राशियों में 9 नक्षत्र होते हैं, प्लीज एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आया।
हाँ, वो आप, मैं आपको चाहिए तो वो बाद में भेज सकता हूँ। तो वो पंचांग में एक टेबल होता है जिसको अवकड़ाहा चक्र बोलते हैं, जिसमें चार राशि के अंदर 9 राशियां होती हैं, सॉरी 9 नक्षत्र होते हैं। तो एक नक्षत्र में 9 पैर होते हैं और उसको ढाई नक्षत्र कहते हैं। वो टेबल है, बिना वो टेबल दिखाए आपको समझेगा ही नहीं। तो मैं टेबल, आप मेरे को संस्कार ग्रुप में सामने से मांगना तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, HINDU, हिंदू।
एक और प्रश्न आया कि जैसे कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स हमारी हस्तरेखा देखते हैं, वो हस्तरेखा कहाँ तक वैलिड है?
हस्तरेखा बहुत अच्छा है, मुझे भी हस्तरेखा में बहुत रुचि है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन हस्तरेखा में एग्जैक्ट मतलब कोई भी चीज को पॉइंट आउट करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसकी जानकारी के लिए 12 वर्ष पढ़ना पड़ता है जिसको हस्तरेखा जानना है। तो हस्तरेखा का विज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, लेकिन बात ऐसी है कि हस्तरेखा में आपको कोई एग्जैक्ट ये बताना मुश्किल होता है, प्रेडिक्शन देना मुश्किल होता है। इसलिए जो कृष्ण पद्धति, कृष्णमूर्ति, KP एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, जो आजकल विशेषकर प्रसिद्ध है, तो वो एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया जाता है कि ये टाइम पे आपका ये काम होगा, ये टाइम पे आपका नुकसान होगा, ये टाइम पे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उसके आधार पे ही खासकर कुंडली ज्यादा ये है, सजेशेबल है। लेकिन हस्तरेखा भी बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, क्योंकि जिन लोगों का कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा देख करके कम से कम समझा जा सकता है। लेकिन बहुत विद्वान, कोई बहुत ही विद्वान होगा तो वो थोड़ा बहुत बता सकता है, कम से कम 60-70% बता पाएगा, 100% तो नहीं बता पाएगा फिर ऐसा है।
जी एक प्रश्न आ रहा है कि हर जगह पे मतलब वर्ल्ड जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, इंडिया में भी हर एक जगह पर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये जो हाथ से बनाई हुई जो वो कुंडली, तो फिर कैसे बनवा सकते हैं हम, तो इसका क्या सॉल्यूशन, क्योंकि कंप्यूटर से तो कैसे भी निकल जाती है, तो लेकिन आप एक लेक्चर में बोले थे कि हाथ से बनवाना जरूरी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं?
नहीं, कुंडली बनाया जाता है ऐसा मैंने बोला होगा, हाथ से कुंडली बना ऐसा तो शायद मैंने नहीं बोला है,
जाता मुझे हाँ लिखा जाता है,
वो लिखा जाता है। देखो एक समय था काल गणना के लिए प्रॉपर लोग ऐसा गणित से गिनते थे उसको, उसकी किरणें होती है उसको गिना जाता था, तो उसमें काफी समय लगता था। आज के समय हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज हो रहा है हमारे लिए। तो ये सब जो आप जैसे पंचांग आप देख रहे हैं अभी, उसमें हम लोग तो कुछ सेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ उसमें सेटिंग में जाकर के अपना लोकेशन सेट कर देते हैं, तो लोकेशन के हिसाब से वो हमको इन जनरल हमको आइडियाज दे देता है कि आज का पंचांग क्या है वगैरह। तो वैसे जो कुंडली भी होती है वो टेक्नोलॉजी में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से कुंडली को दिखा देते हैं, और आप उनको चाहे आप हाथ से लिख करके तैयार करो या वो कंप्यूटर से निकाला हुआ कुंडली को सामने लेके आओ, दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आएगा।
ओके,
ऐसा है।
तो जी एक चीज आपकी, जैसे कि जब हम शादी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं तो बार बार एस्ट्रोलॉजर, जैसे रिश्ते आते हैं बार बार, तो बार बार एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना नहीं हो पाता फिजिकल, तो क्या आप कुछ बेसिक चीजें बता सकते हैं कि जो हम कंप्यूटर पे चेक करके देख लें और उसके बाद यदि हमें कोई उसमें कुछ वैलिड रख लग रहा है तो फिर उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं?
हाँ, तो
एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ गुण बता सकते हैं, गुण मैच होने चाहिए, एक बेसिक चीज।
ठीक है, बेसिक में आपके पास आप ये एस्ट्रो सेज करके एप्लीकेशन आता है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लड़के का डिटेल, लड़की का डिटेल एएम और पीएम के साथ अच्छे से डाल दीजिए। जैसे ही 18 गुण मिल जाते हैं तब आप उस शादी के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं, तब आप ज्योतिष से संपर्क कीजिए। अगर वो 18 गुण से कम मिल रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए, तो फिर वो मैटर पे बात ही मत कीजिए। इसलिए पहले लड़का लड़की मिलने से पहले पहले कुंडली मिलान करो, फिर लड़का लड़की आपस में मिलो, उसके पहले परिवार से या रिश्तेदारों से मत मिलो, कुछ फायदा नहीं। पहले कुंडली मिला लो, अगर कुंडली मान लो मिल रहा है 18 गुण से ऊपर मिल रहा है और सबसे उत्तम माना जाता है कम से कम 22 गुण तो मिलना चाहिए एटलीस्ट। ये नॉन एवरेज है, मतलब नॉर्मल एवरेज है कि कम से कम 22 गुण तो मिलना चाहिए, 18 तो उसका सीमा है, वो एंट्री है, लेकिन 22 गुण इट्स कॉल्ड हेल्दी रिलेशन, तो 22 गुण मिलना चाहिए। तो 22 गुण मिलने के आधार पे हम उसका कहा जाता है कि हाँ ये विवाह ज्यादा अच्छा देखा जाता है। अब जब विवाह में आप देखते हैं कि 18 से ऊपर जा रहा है तो आप ज्योतिषी से प्रार्थना करके उनसे सम्मति लेकर के और फिर रिश्ते के बारे में बात कीजिए। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होता है कि कुंडली नहीं मिल रहा है लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा है तो आप पहले एस्ट्रोलॉजी से बात कीजिए, अगर वो हामी भरता है, मान लो उसमें भी आपको प्रश्न होता है तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर को लीजिए, तीसरे एस्ट्रोलॉजर को लीजिए। अगर तीन एस्ट्रोलॉजर भी अगर एक ही बात को कह रहे हैं कि हाँ ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो फिर उसको उसी हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या कुंडली देखोगे आप, जब प्रेम हो गया आई लव यू बोल दिया तो बात खत्म हो जाता है वापस।
हाँ,
शास्त्र में हर चीज का है। अभी जैसे किसी का विवाह हो गया है, कुंडली नहीं मालूम था, अभी मालूम पड़ा कि दोनों का मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ दोष का शांति कराने से, निवारण कराने से कुछ शांति होगा। 10% 20% नहीं नहीं श्योर है, लेकिन अब उन्होंने ऑलरेडी पहले गलती कर दी है तो हम उसको कितना ठीक करेंगे, तो पहले से ही पूरा सिस्टम बिगाड़ा है तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, बट ज्यादा ठीक होने वाला भी नहीं उससे, अगर दोष है तो।
शांति मैंने लगभग आपको माइक खोल दिया, प्रश्न पूछ सकते
हैं।
हरे कृष्ण।
तो ये क्वेश्चन ये था कि जैसे सभी लोग ये रोजगार क्षेत्र में देखते हैं कि फल, तो ये क्या ये कहां तक सही होता है?
प्रभु जी आप अपना जो ये माइक है ना उसको थोड़ा दूर रख के बोलेंगे तो क्लियर सुनाई देगा हमें। उसको गलती से भी कभी पढ़ना नहीं चाहिए, जो पढ़ेगा वो नरक जाएगा। ठीक है, और
हमारी राशि कौन सी डिपेंड करती है, हमारे नेम के ऊपर या हमारी डेट के ऊपर, मतलब उस क्या है कि इस डेट के बीच में, इस डेट के बीच में अगर आपने जन्म लिया तो वाली राशि है।
देखिए आप, मैं आपको बहुत पहले भी बताया था मैंने कि जो एस्ट्रोलॉजी होते हैं वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत फंसिए आप लोग कि आज मेरे दिन के हिसाब से क्या है तो मुझे क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। इसके लिए तो आपको खुद जाकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जाकर के यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, वो लोग पूरा आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा सकते हैं, जो बेसिक बेसिक काफी अच्छा कुछ सिखा देंगे आपको। तो अगर आप उतना भी पढ़ लोगे तो आपको अपने ही जीवन के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि गोचर क्या है, चलायमान क्या है, कौन से राशि किसमें कौन से ग्रह में एंट्री ले रही है, ये सब आपको अपने आप समझेगा। तो अगर आपको वास्तव में इंटरेस्ट है कि भाई मेरा राशि का क्या चल रहा है तो खुद पढ़ लीजिए, एक ज्यादा नहीं 4-6 महीना अच्छे से मेहनत कर लीजिए, रोज 1 घंटा भी अगर आप यूट्यूब का लेक्चर सुन सुन के प्रैक्टिस करेंगे और किसी थोड़े जानकार व्यक्ति से जानकारी ले लेंगे, आप खुद ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे। आज के समय इतना सुविधा है, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो हम लोग सुन लेते हैं कि आज का राशि का फल ये है वो है, ये केवल उस जन्म राशि के जो आपका चंद्र राशि है यानी जिस राशि में आपका जन्म हुआ है उसके ऊपर आधारित एक जनरल नॉलेज होता है वो, लेकिन वो जनरल बताया जाता है। लेकिन हमेशा राशियों का हर एक, जैसे उसके अंदर तीन नक्षत्र है, तो जैसे मैंने बताया ना ढाई नक्षत्र होते, तो एक नक्षत्र का अलग, अभी जो ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि है तो उसका बता दिया आज तुम्हारा फायदा होगा, लेकिन जो ज्येष्ठा नक्षत्र है उसका अलग होगा, अनुराधा का अलग होगा, विशाखा नक्षत्र का अलग होगा, तो सबका अलग अलग होता है, किसी का एक साथ नहीं होता है, तो वो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है
प्रभु जी, उनका एक प्रश्न और था, उनका नेटवर्क लॉस हो गया, तो उनका एक प्रश्न और था कि हमारी जो राशि होती है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डिसाइड होती है या अल्फाबेट के ऊपर, जो हमारे नेम ऑफ कोर्स अल्फाबेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है?
अच्छा, तो वो राशि जनरली हमारा डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है, हमारे नाम से नहीं होता है। हमारा नाम तो डेट ऑफ बर्थ पे जब देखा जाता है तो उसमें से एक नाम निकलता है, तो वो तारीख के हिसाब से निकलता है, तो क्या डेट ऑफ बर्थ ही कंसीडर करना चाहिए।
प्रभुजी, जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि जो राशि में जो निकला होता है वो जो नेम दिया जाता है वो पहले के समय में क्या होता था कि जो हॉरोस्कोप होती थी उसमें वो लिखवा देते थे कि इस अक्षर पे, लेकिन उसको नाम वो किसी और अक्षर से देते थे, तो ये क्या ठीक बात है?
हाँ, मैंने नामकरण के संस्कार के समय ये समझाया था ये बात कि पहले के समय दो नाम रखे जाते थे, बिकॉज कि एस्ट्रोलॉजर लोग नाम सुन के पता लगा लेते थे और उसके ऊपर उसका कुछ नेगेटिविटी करना है, कुछ बुरा क्रिया करनी है तो वो उसको आसानी से कर लेते थे। आज के समय ऐसा जरूरत नहीं, इसलिए जो राशि वाला नाम रहता है उसी नाम से अगर उसका नाम रखा जाता है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वह नाम रखने से उसके जीवन में उसकी वृद्धि होती है और वृद्धि देखी भी जाती है। तो मैं आपको केवल उदाहरण के तौर पे अपना नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम जैसे नीलेश है, ऐसा जन्म घर का ऐसा नाम मेरा नीलांबर दास है, तो मेरा राशि भी वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, और उसमें जो न आता है नी आता है वो नी से ही मेरा नाम है, तो बाय मिस्टेक बाय डिफॉल्ट मेरे घर में मेरा जो जन्म नाम है वो ऐसे ही पहले से रख दिया गया, तो उसी के आधार पर मेरा नाम भी वैसे पड़ा, और फिर जीवन में भी उसी प्रकार से मुझे जो सुख दुख राशियों के आधार पर जो साढ़े साथी बदलता है, कौन सा जैसे राहु का काल लगेगा, शुक्र का दशम लगेगा, तो उसके आधार पे जो सुख दुख मिलने वाला है तो उसी आधार पे मैं अनुभव कर पाता हूँ। तो जैसे राशि के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है जिस ग्रह का, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो मान लीजिए उसका एक नाम है जो जन्म राशि का नाम अलग है और उसका जो व्यवहारिक नाम है वो अलग है, तो उसको दो दो राशि का भुगतना पड़ेगा फोकट, मतलब अभी साढ़े साथ एक तरह से निकला है दूसरे ओर से लग गया है, उसको दोनों चीजें भुगतनी पड़ती है, इसलिए डबल डबल काम चलता है उसका, तो नुकसान रहता है, एक साइड से डिस्टर्ब रहता है वो हमेशा, ऐसा है।
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी है एक्चुअली, वो अभी एक साल छह महीने की है, अभी हम लोगों ने उसकी कुंडली नहीं बनवाई है, तो आज के लेक्चर सुनने के बाद एक क्यूरियोसिटी थी कि अगर इनिशियल टाइम से ही उसकी सही एस्ट्रोलॉजी के साथ उसे गाइड करें, तो पहला तो ये कि क्या ये दिस इज वाइज, सेकेंड चीज क्या बेटी के जो नक्षत्र हैं वो क्या उसके पेरेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं?
हाँ, तो नक्षत्र तो बच्चों का प्रभाव करता है, लेकिन पांच साल तक जो बच्चे का कुंडली होता है वो माता पिता के ऊपर ही आधारित होता है, यानी पांच साल तक भले हम उसका कुंडली बना करके आपको दे दें और बता दें इसका जीवन में ये होगा, लेकिन पांच साल तक उसके जीवन में जो भी बदलाव होंगे वो जनरली माता पिता के ग्रहों के और माता पिता के राशियों के फलीभूत फल उस बच्चे को भुगतना पड़ता है, अच्छा या बुरा जो भी होता है, तो इसीलिए उनका जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपको नहीं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ग्रह होते जैसे माता पिता और पुत्र या पुत्री का जन्म सेम नक्षत्र भी हुआ है, एक ही नक्षत्र में हुआ है, एक ही राशि में हुआ है, तो उसके लिए विशेष पूजा करानी पड़ती है, वो थोड़ा प्रभावित करता है, बाकी इन जनरल तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। और दूसरी बात, आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि अभी कुंडली बनाना चाहिए, तो निश्चित रूप से बना लेना चाहिए, और अच्छी सहमति लेकर के आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे पास, मैंने एक नंबर शेयर किया था, एक नंबर और शेयर कर देता हूँ, तो आप वो एक दो एस्ट्रोलॉजर हैं अपने पास अच्छे भक्त हैं, आप उनसे कंसिडर कीजिए, वो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि आपको क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि उनका पूरा प्रोफेशन केवल एस्ट्रोलॉजी ही है, तो बहुत अच्छे से वो लोग कार्य करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा है ये ना, कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं?
क्योंकि आज ही पता लगा इतनी सारी चीजों को अचानक से
चिंता मत कीजिए, आप एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिए, वो आपको काफी सारा अच्छा गाइडलाइन दे देंगे। क्योंकि ये जो मैं अगर कुछ बोलता भी हूँ तो जनरली ये बोलूंगा, आपके कोई स्पेसिफिक तो उसका लाभ होगा नहीं, तो उसका कोई सुन के भी अर्थ नहीं है। आप बेटर है आप उनसे पूछिए। वैसे बच्चों का राशियों से ऐसा रहता है कि जनरली जो बालक होते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, उनके माइंड में आप जो डालोगे वही आए, तो इसलिए माता पिताओं का उस समय का जो आचरण होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है। इसलिए पहले के समय थोड़ा उनको बताया जाता था कि इसको इस प्रकार का नॉलेज देना, जैसे जन्म हो जाता था तो जन्म के जब कुछ लोग कहते हैं छठी में उसका कुंडली बनाया जाता था, कुछ लोग कहते हैं कि नामकरण के समय, कोई कहता है कि अन्नप्राशन के समय उसका कुंडली बना के ब्राह्मण आता था और प्रेडिक्शन देता था कि ये करो इसके लिए ये चीजें हैं, उसके आधार पे वो लोग माता पिता उसके लिए वैसा कार्य करते थे। तो ये जनरल प्रेडिक्शन दिया जाता है ऐसा, और उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप जैसे 1.5 साल हो गए आपने कुंडली बनाया नहीं, अभी आपको अब मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, तो आप उस आधार पे उसका अपना जीवन बनाइए। आप लोग अपना आचरण ऐसा रखिए कि बच्चे को उसके ऊपर उसके मन पे वैसा प्रभाव पड़ता जाए। इसके लिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सारे संस्कार किए हैं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद।
उसके बाद आशीष को नेक्स्ट टाइम संदीप में आपको माइक ऑन कर रहा हूँ, प्रश्न पूछ सकते हैं। वेरी गुड
जो गोत्र है ये सब पीछे सब लोग निग्लेक्ट करके कर रहे हैं, तो जैसे अर्जुन ने जो गीता में कहा है कि जो वर्ण संकर होगा उससे जो संतानें होंगी वो सब धार्मिक धार्मिक चीजों में उनकी उन्नति नहीं रही, का मन नहीं लगेगा। तो ये जो वर्ण को भेद करके लोग कर रहे हैं जो बाहर के समाज में और भक्त के समाज में, तो समझ लो कि अगर अच्युत गोत्र में तो ऐसा लगता है कि वो एक ही वर्ण हो गया अच्युत गोत्र हो गया। लेकिन बाहर के लोगों में जैसे अभी नॉर्मली बाहर देखा जा रहा है कि यार तो लोग लव क्या कहते हैं लव मैरिज और या लव मैरिज को ही अरेंज करा के कर रहे हैं लोग, समाज में फ्यूचर में जो अर्जुन बोल रहे हैं इधर की काम में, तो ये उसी वर्ण संकर की बात है।
तो देखिए ये एकदम सही बात है कि पहली बात तो लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत है। अगर किसी भी भक्त, मैं भी सिर्फ भक्तों के विषय में बात कर रहा हूँ, यदि किसी भक्त को ऐसा लगता है कि किसी उसने स्त्री को देखा है जिसे उसको लगता है कि इससे इसका विवाह होना चाहिए, तो उसको पहले अप्रोच करना चाहिए अपने काउंसलर से, अपने गुरु से, जो लोग उसको जानते हो, या उससे उसके लिए बात करे। डायरेक्ट वो ना बात करे, उसके वो अप्रोच करे और उनका कोई तीसरा चौथा व्यक्ति माध्यम बन करके उनको जाकर के रिप्रेजेंट करे। तो ये एक तरीका होता है किसी को विवाह करने का, डायरेक्टली जा करके उसको महाप्रसाद दे करके बोलने का तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, तुम्हारा घर का एड्रेस बताओ, ये सब नहीं करना चाहिए। तो जनरली लोग ऐसा करते हैं, तो ये सारे चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही शांतिपूर्वक प्रेम से और माता पिता के आज्ञा को लेकर के ही कोई कार्य करना चाहिए। देखिए अगर हमने कभी जीवन में माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया ना, हमको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको अनुभव के साथ बोल सकता हूँ। और इसके ऊपर हजारों मेरे पास उदाहरण है, जिन भी लोगों ने
बाहर का इन्फ्लुएंस इतना है लोगों में कि लोग आज इन सब चीजों का केयर नहीं करते हैं। तो पहले का अर्थ है कि जो ये वर्ण वर्ण संकर है, ये वर्ण संकर उसी की मतलब ये एक ही हिसाब से वर्ण संकर ही होगा अर्जुन जी
का। हाँ वर्ण संकर कैसा होता है, अगर आपकी बुद्धि कैसी उसके ऊपर है। जैसे दो भक्त है, दोनों भक्ति कर रहे हैं, तो उनका वास्तविक देखा जाए तो बुद्धि कैसा है, उनका दोनों का बुद्धि ब्राह्मण जैसा ही है, तो वो लोग एक ही लेवल में गिने जा सकते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि कोई व्यक्ति एक ही घर का एक ही सदस्य है जो वहां पे भक्ति कर रहा है, उसका पूरा परिवार भक्त नहीं, तो उस घर के लिए पहले सोचना चाहिए कि हम अगर इस घर में विवाह करेंगे तो आपका संबंध केवल उस व्यक्ति से नहीं हो रहा है, आपका संबंध पूरे परिवार से हो रहा है। तो अगर आपका जो बुद्धि है, विकास है, या जिस परिवार में आप पले बड़े हो वैसा ही सामने वाले का परिवार है तो आपके लिए वो अच्छा विवाह माना जाएगा। लेकिन अगर आपका विवाह, जैसे मान लीजिए कोई इंडियन डिवोटीज है, कोई फॉरेन से विवाह कर रहा है, तो वो एक्चुअली वर्ण संकर ही बोलेंगे उसको। उसका कारण यह है कि उनके जीवन का लाइफस्टाइल और इनके जीवन का लाइफस्टाइल बहुत जमीन आसमान का अंतर माना जाता है। हाँ यदि किसी कन्या, भले वो फॉरेनर है लेकिन उसका जन्म भारत भूमि में ही हुआ है, उसका पालन पोषण भी भारत भूमि में हुआ है, उसका रहन सहन भी भारत भूमि में ही हुआ है, तो भले वो शरीर के स्वरूप से भले वो विदेशी दिखे लेकिन उसका जीवन जो बचपन से ही मुंबई, अरे जन्म भारत में हुआ है, तो उसके लिए उसका साथ विवाह करना आसान है, उसको वर्ण संकर नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई मान लीजिए जीवन के 20-25 साल विदेश में रहा है, उसने वहां मांस खाया है, शराब पिया है, अब वो जाकर के भक्ति में आया है, तो भक्ति में भी उसके लिए कुछ नियम थोड़े अलग ही रहते हैं, उसके लिए उसको ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। तो इवन भक्त भी बोलते हैं कि नहीं ये जितना कर रहे हैं वही बहुत है, तो उनके हिसाब से वो सही भी है। लेकिन उनके साथ अगर हम विवाह करते हैं तो हमारा जीवन कठिनाई में आ जाता है, और जिससे ऐसे बच्चों का जन्म होता है जो ना इधर माता पिता को समझ पाते हैं ना भक्ति को समझ पाते हैं, और वो सोसाइटी में ही क्रिएशन करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए ऐसे ऐसे विवाह नहीं होने चाहिए। ठीक है,
वर्ण संकर में ही बहुत सारे संकर आते हैं, मैंने ऐसा सुना है प्रभु, लेकिन ठीक है अभी वो टॉपिक नहीं है जो इसके लिए मैं आपसे स्पष्ट नहीं पूछूंगा उसमें। मतलब तो मैंने सुना था ऐसे किसी ब्राह्मण से कि जैसे बहुत सारे संकर है, जाति संकर है, फिर उसके बाद भाषा संकर है, ऐसे ऐसे बहुत सारा ये होता है। जैसे अभी अलग अलग प्रदेश के कोई भक्त, जैसे कोई साउथ इंडियन है और कोई नॉर्थ इंडियन है, अगर ऐसे विवाह हो गया तो फिर वो जो बच्चा होगा उसका जो फ्यूचर है, मतलब वो
ठीक है, इसके ऊपर हम पर्सनली चर्चा कर लेंगे, ऐसे बंद करते हैं यहाँ पर।
हरे बोल, थैंक
यू, थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। आशीष प्रभु, मैं आपको माइक ऑन कर रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आशीष प्रभु, आई थिंक वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी। आशीष प्रभु, हरे कृष्णा, आपको माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। आशीष प्रभु, आई थिंक आपको आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो ऑन रखिए तो हो सकता है आप कनेक्ट हो। ठीक है, बाद में कनेक्ट करेंगे आशीष प्रभु। रचिता के प्रभु, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, अपना प्रश्न पूछ सकते।
हरे कृष्णा
प्रभु,
हरे कृष्णा जी, तरफ प्रणाम प्रभु।
यस प्रभु जी, तरफ प्रणाम।
मेरा मतलब छोटा सा ऐसी मतलब जिज्ञासा थी अभी थोड़ी, जो अभी जो चल रहा था जैसे तो इसके ऊपर मैं पूछ रहा था कि मतलब कि किसी से किसी का यही पता लग सकता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ ना पता हो तो।
हाँ, एक प्रश्न कुंडली बोलते हैं उसको, तो प्रश्न कुंडली के आधार पे डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया जाता है। मतलब अगर आपको थोड़ा भी इंडिकेशन पता है कि भाई वो साल में ये दिन में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, या अगर आप केवल ये प्रश्न ही कर लेंगे तो कुछ 10-12 प्रश्न होते हैं उसके, उससे संबंधित आपका एक प्रॉपरली आपका जन्म कुंडली बना दिया जाता है ऐसा मार्ग है हमारे शास्त्र में, मिल जाएगा उसको। मैं आपको एस्ट्रोलॉजर का संस्कार में नंबर मैंने भेजा है संस्कार ग्रुप ने, आप उसमें भी ले लीजिए। हाँ, और भी एक डिवोटी का नंबर अभी शेयर करूंगा आज, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते। ठीक है, ओके।
उसका मैं भी पूछ रहा था, मतलब से मैं देख कर गया कि जैसे विवाह संस्कार वगैरह किया जाता है पहले वैसे, मतलब कुछ जन मैं चाह रहा था कि एक स्मृति प्लान करके तारीख में जैसे क्या होता पहले के टाइम पे ना, मतलब हमारे के टाइम है उस करते हैं सेल्फ द्वार, तो जब भी ज़्यादा कुंडी वगैरह देखते हैं बस रिश्ते वगैरह के बाद चीज़ें बता दी
तो जी कैसा होता है लोग विवाह है ना आजकल कैसा करते हैं, ना तो कुंडली तो मिला लेते हैं, कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है परिवार से सहमति करके विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली सच बात ऐसी है कि परिवार वाले या जो उसको रेफर कर रहा है वो सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहां पे मिसिंग करते हैं या झूठ बोलते हैं और तब विवाह कराते हैं। इसलिए कुंडली भले अच्छे से मिल जाए लेकिन अगर आपको परिवार का बैकग्राउंड नहीं मालूम है या वो परिवार और आपका परिवार में पहले सहमति अच्छी नहीं है या लड़के लड़की में सहमति अच्छी नहीं बनती है, कुंडली देख करके भी बता लगाया जा सकता है, तो उस आधार पर उनका विवाह नहीं होना चाहिए। भले कुंडली मिलता है ऐसा नहीं, कुंडली तो 36 गुण भी मिल जाते हैं लेकिन उनके भी डाइवोर्स होते हैं। तो अर्थ यही है कि पहले कुंडली में ये देखना है कि इस कुंडली से ये कुंडली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जनरली वो लोग बस देख लेते हैं हाँ 36 गुण मिल रहा है 22 गुण मिल रहा है विवाह करा दो, लेकिन उसके आगे वो भुगतने वाले वो लोग हैं उनका तो कुछ पता नहीं है। इसलिए योग्य ज्योतिष को दिखाइए, ठीक है, योग्य ज्योतिष को यदि नहीं दिखाएंगे तो उनका जीवन संकट में पड़ने वाला है और निश्चित रूप से पड़ता ही है, हमने बहुत अनुभव किया है, बहुत सारे केसेस देखे हैं। हम मना करते हैं कि मत विवाह करो फिर भी मानते नहीं है और फिर बाद में वापस से सेफ्रॉन छोड़ करके विवाह करते हैं और फिर उनके बाद में ना मंदिर के रहते हैं ना घर के रहते हैं, ऐसी हालत हो जाती है उनकी। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके हरे कृष्णा।
आशीष मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ।
हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच आपके पूरे एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छे लेक्चर थे और पूरे लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं शुरुआत करता हूँ, मुझे ऐसा देखा गया है कि जो भी प्लैनेट से लाइट आती है और जो स्पून पहनते हैं ये स्पून किसी भी तरीके का जैसे अगर किसी के पेट में दर्द हो आपको हल्का सा कम करते हैं लेकिन पूरा कम नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है?
क्या पूछ रहे वो भूल गया, बाकी प्रश्न सुना, किसके लिए पूछ रहे ये भूल गया, वो नहीं सुनाई दिया।
मुझे स्टोन के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ, जो कहते हैं नीलम का स्टोन पहनिए तो शनि की साढ़े साथी पे आप बचेंगे।
हाँ हाँ,
ये किसी भी चीज में वो होती है ये एक इफेक्ट को कम कर देती है लेकिन पूरी तरीके खत्म नहीं करती,
राइट,
ऐसा क्यों होता है?
देखिए क्योंकि हमारा कर्म जो ग्रह होते हैं वो हमारे पर प्रभावित होते हैं, हमारा कर्म पे प्रभावित होते हैं, तो जो स्टोन वगैरह है वो उसका एक प्रतिरूप प्लेनेट जैसा ही एक पत्थर होता है जो हमारे बॉडी पे उसको लगाने से वो किरणें जो हैं वो ठीक करती हैं, लेकिन किरणें जो ठीक भी करती हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे कर्म और भी तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण और एक और कर्म होता है, ऐसे तीन प्रकार के कर्म हैं। तो जो संचित कर्म होता है यानी पूर्व जन्म में हमने जो संचय कर लिया है भर के रखा है उसको इस जन्म में हमें भुगतना है, ठीक है, तो इस जन्म का एक कर्म होता है उसको, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है उसको कहेंगे संचित कर्म, लेकिन आप पूरा 1 करोड़ रुपए तो एक बार में नहीं खर्चा करोगे, आप क्या करोगे उसमें से 2-5 लाख रुपए निकाल लोगे, ठीक है, तो 2-5 लाख रुपए निकाल लेने के बाद, हाँ किसी ने कमेंट किया कि प्रारब्ध बहुत अच्छा है, तो संचित कर्म जो होता है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और उसके बाद में जो हमारे जो कर्म होते हैं जिसको हम लोग भुगतने वाले हैं उसको हम लोग उसमें से क्या करते हैं 5 लाख निकाल लेते हैं इस जन्म के लिए, अभी पूरा 95 लाख हमारा बाकी है, तो वो 5 लाख का भी हम एक साथ नहीं खर्चा करने वाले एक साल के अंदर, हम क्या करते हैं एक महीने में कुछ 10,000-20,000 ऐसे ही खर्चा करते हैं। तो मान लीजिए किसी का 7.5 लगता है तो 7.5 के हिसाब से कुंडली के हिसाब से लिखा गया है इस व्यक्ति को आपको नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा, बिजनेस का लॉस होगा, इस विषय में बताया जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपके और भी कर्म जुड़े हुए हैं जो साढ़े साथी से लेना देना नहीं उनका, लेकिन उनके अपने कर्म हैं, उन कर्मों का आपको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए एक कर्म होता है। इसलिए जब स्टोन पहनते हैं तो हम देखते हैं कि ये चीज तो कम हुआ है लेकिन कुछ और बढ़ गया, तो वो क्योंकि दूसरा कर्म भी साथ में लगा हुआ है। तो आप एक का वॉल्यूम कम करो तो दूसरा बढ़ने लगेगा। बट एनीवे ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है हमको कुछ सपोर्ट दे देता है, जिस वजह से हम कहीं एक एंगल से तो कम से कम अपने आप को बचा लें, भले हम हर एंगल से नहीं बचा पाएंगे, तो जहां से जो चीज कम हो जाए उतना तो कर लेना चाहिए इसके लिए। ठीक है, आपका माइक बंद है प्रभु जी। वेणुगोविंद प्रभु माइक चालू कीजिए प्रभु जी का।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ प्रभु।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो डिवोटीज होते हैं तो डिवोटीज पे कहते हैं कि अलग ही तरीके का एस्ट्रोलॉजी फर्क करता है, तो ये क्या चीज है और इसको किस तरीके से समझते हैं?
जैसे श्रीमद् भागवतम का मैंने कोट भेजा था, पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, जिसमें परीक्षित महाराज के ऊपर में कृपा जी का तात्पर्य लिखा हुआ है काफी विस्तार से। वो यही बता रहे हैं कि जो ग्रह है ना ये किसी को छोड़ने वाले नहीं, आप कितने महान भक्त बनो ये किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि ये जो ग्रह है ये एक्चुअली हमारे कर्म का स्वरूप है। तो हमने जो भी कर्म किया है वो कर्म के अनुसार एक फल बनता है, और वो फल को देने के लिए उनके पास एक अपना खुद का आप बोल सकते हैं गूगल ड्राइव में पूरा भरा हुआ रहता है। तो जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो उस जन्म में वो गूगल ड्राइव में से कुछ कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, तो बताते हैं अब इसको ये सजा दो ये सजा दो, तो वो हिसाब से निकलता रहता है। तो ये जो ग्रह होते हैं वो हमारे लिए भरे हुए रखे हैं, लेकिन वो हमारे कर्मानुसार हमें सुख और दुख देंगे। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हम लोग बस आज किया और उसका कल ही फल मिल जाता है, तो कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है, तो कर्म में हम लोग जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, और जो भी हमारे साथ जो व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है उस कष्ट को चुपचाप सहन कर लेना ही कर्म का निवारण है। अगर आपने उसके ऊपर ज्यादा एक्टिविटी की है, अरे बोल, हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया।
सब लोग का हो गया कि सिर्फ मेरा ही हुआ?
प्रभु जी से सबका डिस्कनेक्ट हुआ है, एक मिनट रुकिए प्रभु जी, सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
चलेगा चलेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
प्रभु जी आप फिर से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, सभी लोग दोबारा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी
आप दोबारा बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, सभी लोग कनेक्ट हो गए।
ठीक है,
जो बता रहे थे
तो मैं यही बता रहा था कि जो कर्म होता है, कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा होता है, तो जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमारे वो प्लेनेट जो होते हैं वो हमें कष्ट देते रहते हैं। और हम चाहे जब तक हम शुद्ध भक्ति के पूर्ण स्तर पे नहीं आ जाते, हमारी मुक्ति जब तक नहीं हो जाती। देखिए मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति पहली बार इतना सरल नहीं है, बहुत कठिनाई से मिलता है मुक्ति। तो जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक ये जो चक्र हमारे ऊपर काल चक्र घूम रहा है, ये काल चक्र तब तक ऐसा घूमता ही रहेगा, हमारे ऐसे सिर के ऊपर ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए जिन लोगों को मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो उनको इतनी अच्छी भक्ति कर लेनी चाहिए, तब उनके ऊपर कोई ग्रह का अटैक नहीं होता, उनके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, उनका पूरा 1 करोड़ रुपया खत्म हो जाता है, ऐसा समझ के उनका पूरा निवारण हो जाता है, तब जाकर के उनका पूरा शांति हो जाता है उनके जीवन। तो इसलिए जो लोग भी ये कर्म को चाहते हैं कि उनको नष्ट हो जाए या किसी प्रकार से, तो लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम पूरा भक्ति कर नहीं पा रहे अच्छे तरीके से, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी है जो हमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है, तो वो हमें सहायता लेकर के अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन अंत में यही है कि पूरा कर्म तभी नष्ट होगा जब हम पूर्ण शुद्ध भक्ति करेंगे, नहीं तो तब तक ये सभी प्रभावित करेंगे, और जब चाहे आप जप करो मत करो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, फर्क पड़ेगा ये कि आपका मन शांत होगा, कष्टों से लड़ने की आप में शक्ति आ जाएगी, केवल इतना ही लाभ होगा, और कुछ लाभ नहीं होगा, आपका कर्म तो आने वाला है आपसे, ऐसा है।
जी जी जी।
अच्छा प्रोजी, ऐसा देखा गया है कि कई बार एक ही फैमिली में जब एक दंपत्ति के दो बच्चे होते हैं तो एक का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही संघोली होता है, बट दूसरे वाले का जो होता है वो बहुत ही रजोगुणी तामसिक तरीके का व्यवहार होता है, बहुत राक्षस तरीके का। हमने महाभारत में भी देखा कि 100 पांडव जो 100 कौरव थे वो बहुत ही ज्यादा राक्षस प्रजाति के थे, लेकिन थे वो सारे ही अच्छे मतलब बैकग्राउंड से और अच्छे कर्म हमारा प्राप्त। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसको क्या सुधारा जा सकता है?
हाँ, अभी जैसे देखिए दुर्योधन का भी जन्म हुआ है, युधिष्ठिर का भी जन्म हुआ है, तो दुर्योधन के पिता की बुद्धि से देखिए आप, पहले आप जब ये देखेंगे कि जो बीज है वो कहाँ से आया, पेड़ से आया है, तो कोई भी आप एंगल का अगर आप प्रश्न करेंगे तो आप पहले उसका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि उनकी इस बुद्धि के वजह से उनके बच्चों में वैसी बुद्धि आई। इसलिए मैं कहता हूं अगर आम का वृक्ष है तो उसका जो बीज आएगा वो भी आम का ही आएगा, उससे अमृत नहीं निकलने वाला। उसी प्रकार कोई व्यक्ति यदि अच्छा शुद्ध तरीके से जीवन नहीं जी रहा है तो उसका बालक कितना भी शुद्धि करने का प्रयास करे लेकिन उसके जीवन में बहुत सारे दुर्गुण नजर आएंगे आपको। तो जैसे हम लोग भी भक्ति करते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे तुम भक्ति करके भी ऐसा करते हो, तुम भक्ति करके भी ऐसा करते हो, क्योंकि हमारे माता पिता का इतना शुद्धिकरण नहीं हुआ था जिस वजह से हम इस प्रोसेस में अभी आधे हैं, लेकिन हम लोग कम से कम आधे हैं तो हमारे जो आगे बच्चे होंगे उनमें वो शुद्धिकरण काफी ज्यादा दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि हम उस तरीके से उनका शुद्धिकरण रखेंगे, क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है, शरीर भले शुद्ध ना हुआ तो इसलिए मन में कभी काम वासना जागृत होती है, कभी क्रोध बहुत आता है, तो ये दुर्गुण की वजह से होता है। लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसी भक्त के माध्यम से ज्यादा फिल्टर होके आएगी तो ज्यादा घर में वो उसमें भाव अच्छे गुण नजर आते हैं।
अच्छा, तो प्रोजी कोई भी अगर कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसका विधि विधान है कि उसे ठीक
कराए।
प्रोजी जैसे हम एक चीज और देखते हैं कि अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है तो आयुर्वेद में कहते हैं कि जो भी नहीं देखता है उसको भूत बोला जाता है, तो इसमें क्या कोई प्रभाव
या इसको अकाउंटेबिलिटी में हम लोग देखते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजर देखते हैं? देखिए, इसमें कैसा है, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना, इसमें तीन प्रकार के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एक होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है जो सैद्धांतिक एस्ट्रोलॉजर होता है। हम लोग जिस एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजर केवल हमारे जीवन के ऊपर आधारित बताते हैं। तो जो बड़े एस्ट्रोलॉजर होते थे, जो सैद्धांतिक टाइप के एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो लोग अगले 100 साल के बाद भी क्या होने वाला है वो प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? उसका कारण ये है कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनता नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई आके आपको ये सवाल, आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलते हैं बताओ मुंबई का हाल क्या है इस समय, उसका अभी ग्रह राशि क्या है? अभी ये तो कोरोना वायरस हुआ इसलिए सब पूछ रहे हैं, इसके पहले कोई कभी पूछता ही नहीं था। तो जिन एस्ट्रोलॉजर से अपेक्षाएं कर रहे हैं कि वो हमें एस्ट्रोलॉजी से ये बताए कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, वो एस्ट्रोलॉजर इसमें सक्षम ही नहीं है, उसमें सक्षम ही नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनको उसका टेक्नोलॉजी लिया नहीं। मतलब हम जनरल फिजिशियन से हम जा करके न्यूरोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा बात है। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट है उसको ब्रेन के अंदर के जो अंदर अंदर पार्टिकल्स हैं उसका जो नॉलेज है वो जनरल फिजिशियन के डॉक्टर को नहीं मालूम है। तो इसके लिए हम जो एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं ये जनरल डॉक्टर हैं, और जो सैद्धांतिक एस्ट्रोलॉजर है वो लोग उसका प्रेडिक्शन बताते हैं कि हाँ ये साल में ये कोरोना वायरस जाएगा नहीं जाएगा। अभी जो सैद्धांतिक एस्ट्रोलॉजर है उनमें से एक ने प्रेडिक्शन दिया था कि सितंबर आने तक में केवल दवा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल पाएगा लेकिन ये निवारण नहीं होगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है, आधा है। अगर आप उस स्टेटमेंट को सुनोगे तो उसमें भी लिखा है कि होगा, ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो होगा का मतलब होता है शायद। तो इसलिए उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे कि हिज एकदम परफेक्टली वो आंसर दे रहे हैं, बस हाँ वो अनुमान लगा रहे हैं लेकिन प्रमाण नहीं है उसका। तो ऐसा है, ये सब बहुत बड़ा विषय है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने बस सुना कि ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था ना कि तुम्हारा 10 साल के बाद ये होगा वो होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं बता रहा है कि कोरोना वायरस आने वाला था। तो उसका कारण ये है कि वो जनरल फिजिशियन है और वो एक अलग जो डॉक्टर होते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो सबके अपने अलग अलग कैटेगरी होते हैं, और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ज्यादा काम नहीं मिलता है, इसके लिए उसका प्रैक्टिस कोई करता नहीं और उसको कोई सिखाता भी नहीं चलता। जैसे हर एक कंट्री के ऊपर अपना एक ग्रह होता है, जैसे आप दुबई वगैरह जाएंगे तो वहां राहु ग्रह का प्रभाव है, ठीक है। अगर आप अमेरिका पे जाओगे तो वहां पर ये शुक्र ग्रह का काफी प्रभाव है। तो सब ग्रह जो होते हैं एक एक देश के ऊपर उनका प्रभाव भी होता है, वहां पे लोगों का मेंटेलिटी भी वैसे ही रहेगा, ऐसा प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए हर ग्रह का हर एक देश में भी प्रभाव होता है। अब ये तो कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा अपने जीवन में कभी, तो ये इसी कारण से होता है। तो हम लोग उनसे अपेक्षाएं जो करते हैं वो उतना सही नहीं है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं उनकी साइड ले रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए किससे प्रश्न करना है, राइट।
थैंक यू सो मच प्रजी, एक और आपने बात बोली थी कृष्ण ग्रह की, बस वो
जी जी जी
जी जी जी क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ
क्या है।
आपने बोला था एक कृष्ण ग्रह होता है, कृष्ण ग्रह के बारे में आपने
रेफरेंस? नहीं नहीं, कृष्ण ग्रह नहीं होता है, रोहिणी नक्षत्र मैंने बताया था जो कृष्ण के से संबंधित है, ऐसा बोला होगा।
ठीक है,
हाँ अगर आपको फिर भी चिंता है तो आप ग्रुप में प्रश्न कीजिएगा, मैं फिर उत्तर दूंगा आपको, ठीक है।
थैंक यू सो मच,
हरे हरे कृष्ण।
एक भक्त का प्रश्न आया है कि हमारा जो नाम है वो राशि के अनुसार नहीं रखा गया था। एक मिनट रुकिए, ट्रेन आ रहा है। मैं हाउस इज नियर टू रेलवे स्टेशन।
अच्छा,
तो ट्रेन से और डिस्काउंट,
लेकिन हम लोग को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आप क्लियर बोल सकते हैं।
वी आर ओके, मेरे को लगा वॉइस आ रहा है क्योंकि मेरे तक आया था।
हाँ हाँ, ठीक है।
प्रभु भक्त ने प्रश्न पूछा कि उनका जो नेम है वो राशि के अनुसार नहीं रखा गया था, और अब उनका दीक्षा भी हो गया है, तो दीक्षा में भी जो नाम मिला है वो प्रेजेंट नेम के अल्फाबेट के अनुसार मिला है, तो क्या
वो फिक्स है, उसमें कोई बोलने जैसा बात ही नहीं। गुरु महाराज ने दे दिया तो कृपा हो गया, अब उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं।
लेकिन मटेरियल नेम से भी तो लोगों ने बुलाते ही है।
हाँ, तो मटेरियल नेम भी है, एफिडेविट करा सकते हैं, लेकिन वो पहले एस्ट्रोलॉजी से सहमति लेना चाहिए कि भाई मेरा ये जो नाम है ठीक है क्या, मेरे पर ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वो हिसाब से उसके ऊपर राय ले सकते हैं आप, ऐसा है।
विद्वान गौरांग प्रभु जी, मैं आपका माइक खोल रहा
हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी, हरे कृष्णा।
आपने आज बहुत ज्यादा खूब बातें बताई, इसको आप जीवन में प्रयोग करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा सुविधा हो सकती है। प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था, जैसे कि अभी आपने बताया कि पुत्र का नाम जो है वो जो राशि का नाम निकलता है उसी अल्फाबेट से हमें रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जनरली ये कहा जाता है कि जो राशि का नाम निकलता है वो नहीं रखना चाहिए और दूसरा नाम रखना चाहिए, तो अपने बच्चों का जो यही नाम रखा था।
तो माता जी, वो प्रश्न का उत्तर तो मैं दे चुका हूँ, फिर भी एक बार वापस आपके लिए बोल देता हूँ। ये जन्म राशि जो होता है ये आज के समय में इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर इतना बुद्धिमान नहीं होता कि उसका कोई नुकसान पहुंचा सके, बस इसीलिए उसको नुकसान ना हो इसके लिए उसका जन्म राशि का नाम नहीं उच्चारण कराया जाता। बाकी इसमें कोई कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि वो दो नाम रखना चाहिए, ऐसा तो कोई श्लोक नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि वो आप उसका जन्म राशि वाला नाम दे सकते हैं, ठीक है।
मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो हमने अभी हम उनको उसी नाम से पुकारते हैं जैसे जो हमने रखा है बाद में जो राशि का नहीं है, तो क्या अब हमें नाम बदलने की आवश्यकता है क्या?
अच्छा,
हम बोल रहे हैं।
नहीं नहीं, अभी अगर आपने रख ही दिया है, अब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब आईडी चढ़ गया है, तो अभी रहने दीजिए, लेकिन अगर उसके उससे बहुत प्रभावित उसका जीवन हो रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजर से कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत सारा उत्तर मिलेगा, आपको बहुत आसानी से मिलेगा।
ठीक है,
वो बता देंगे कि इसका नाम बदलने की आवश्यकता है नहीं। जनरली कोई कुंडली देख के भी बता देता है कि इनका नाम बदल दीजिए तो इनको लाभ होगा, ऐसा बता देते हैं। अगर जीवन में कष्ट बहुत आ रहा है तो नाम बदलने की आवश्यकता है, लेकिन एज अ नॉर्मल लाइफ चल रहा है तो ज्यादा कुछ इतना चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है
जी, प्रश्न और है?
हाँ
जैसे कि अभी आपने बताया था जैसे उपनयन संस्कार से लड़कों का होता है तो लड़के जो है गुरुकुल में उनको भेजा जाता है विद्यालय, लेकिन जो लड़कियां हैं तो उनके लिए हमें शिक्षा भी देनी है तो उनके लिए हम क्या जैसे आप स्कूलों में तो ये सब भौतिक शिक्षाएं दी जा रही है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं लड़कों के लिए?
लड़कियों को घर में शिक्षा देनी चाहिए, उनको घर में अतिथि आते हैं उनको सेवा कार्य में लगाना चाहिए, उनको रीति रिवाज जो घर के होते हैं कुकिंग करना, घर के सारे कार्य करना, ये उनको सिखाना चाहिए, साथ में उनको पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए। अगर उनको केवल पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो वो लड़कियां शांत नहीं रहती, उनको साथ में घर का काम करना सिखाइए तो लड़कियां अच्छे से सुखी जीवन जीत पाती है। ठीक है, तो ये लड़कियों का धर्म है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम पर्सनली बात करेंगे।
तो आपको मुरादाबाद के हेड महाजन प्रवीण प्रभु से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वो मिलेंगे तो आ जाएंगे।
जी जी, वो हम पर्सनली बात कर लेंगे माता जी इसके लिए।
किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो वो लास्ट हम 5-10 मिनट है और वो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो किसी भी संस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि कभी कोई प्रश्न हो तो हम 5 मिनट्स और प्रचित कृपा प्रभु।
हाँ
प्रचित कृपा प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, एक मिनट।
हरे कृष्णा।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा।
प्रभु जी मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बताया था कि जो बच्चों के लिए जैसे बच्चे जैसे कुछ चंचल बच्चे होते हैं कुछ ऐसा, उनके लिए आपने बताया था कि एक तो सूर्य को पानी देने के लिए और एक तांबे के बर्तन में पानी पीने के लिए,
जी
तो जो उनके यहाँ
क्या बोल रहे हैं? लास्ट का नहीं सुना,
प्रभु जी वो क्या एज तक बच्चों से लेना चाहिए?
16 या 18 वर्ष की आयु तक तो सारा वैसा ही रूल फॉलो कराना चाहिए उनसे, तो अच्छा रहता उनके जीवन के लिए।
संजय प्रभु जी, संजय प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु,
आपने वो जो गर्भाधान में बताया था कि उसमें पर्टिकुलर वार होना चाहिए एंड नक्षत्र मैच होने चाहिए, उस सब में कॉन्सेप्शन का सोचना चाहिए, तो अगर वो सारा कुछ मैच करने जाएंगे तो आई मीन बहुत ही लिमिटेड मे नॉट बी मैच ऑल द थिंग्स।
यस, बट उसमें जैसे कुछ खासकर नक्षत्र महत्वपूर्ण है, तिथि महत्वपूर्ण है, और दिन अगर एडजस्ट हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना चाहिए, नहीं हुआ तो चलेगा एक बार, लेकिन तिथि और नक्षत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी एकादशी आ गया तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, और नक्षत्र खराब आ रहा है तो अवॉइड करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर इतना भी कठिन नहीं है, आपको कम से कम 2 या 3 डेट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आप फेस्टिवल वाले समय में गर्भाधान करने का प्लानिंग करोगे तो आप पूरा महीना महीना निकल जाएगा, आपको डेट ही नहीं बैठेगा आपको, तो इसलिए मैंने बताया था ना कि खासकर जून जुलाई का जो समय होता है गर्भाधान के लिए उत्तम माना गया। लेकिन अगर कोई आज के समय में भी यदि प्लानिंग कर रहा है तो कोई गलत नहीं है उसमें, लेकिन उसको सेट करना पड़ता है पहले, तो फिर वो देख करके और फिर बाद में मिलता है प्रभु जी, बहुत आसानी से मिलता है, 2-3 डेट तो आराम से मिल जाएगा उसको, मतलब मैं एकदम ना बोल रहा हूँ, तो ऐसे तो 8 डेट मिलते हैं, 8 में से 2-3 तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, आराम से मिल जाएंगे। कुछ लोग तो एक ही एक डेट में ही पहले बार में ही उनका गर्भाधान हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले डॉक्टर से कंसिडर कर लेना चाहिए, हेल्थ वगैरह अच्छा चेकअप करा लेना चाहिए, और जब डॉक्टर भी बोल देता है कि हाँ ठीक है या कोई आयुर्वेदिक है उससे आप वैद्य से भी संपर्क कर लीजिए, अगर वो कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं गर्भाधान के लिए जा सकते हैं तो फिर जाना चाहिए। पहले ही प्लानिंग की है फिर मिसिंग हो रहा है फिर बाद में प्लानिंग करेंगे, उससे अच्छा पहले डॉक्टर से संपर्क करो तो ज्यादा अच्छा आपको उत्तर मिलेगा। और कुंडली उंडली दिखवा लेनी चाहिए कि अगर प्लानिंग करना है गर्भाधान के लिए तो क्या है अच्छा। देखो हमको आधा चीज का ज्ञान है आधा चीज का ज्ञान नहीं, तो जैसे कुंडली में भी नक्षत्र देखे जाते हैं उसका भी योग देखा जाता है, तो बोला जाता है कि आप ये साल नहीं अगले साल प्लानिंग करो, तो वो साल प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी सेम डे में प्लानिंग करके बैठ जाओगे तो सक्सेस हो गया अच्छी बात है, कभी कभी सक्सेस नहीं होता है तो इसलिए कष्ट आते हैं जीवन में, तो उसके लिए थोड़ा चेक करके आप कीजिए और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए ये सब पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही निर्भर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस आप एस्ट्रोलॉजर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं। आप खुद भी थोड़ा सा उसके पीछे मेहनत करेंगे तो आपको बहुत सारा जानकारी अपने आप मिल जाएगा, थोड़ा सर्च करने की आवश्यकता है बस और कुछ नहीं। अभी कौन सा महीना चल रहा, रमजान महीना चल रहा है ना, इसमें भर भर के गर्भाधान करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बच्चे का अगर माँ के गर्भ से उसकी मृत्यु हो गई तो भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि जन्म भी हो गया और दो चार दिन दस दिन रहा और फिर मृत्यु हो गई तो भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसको ले जाके गाड़ा जाता है और उसके लिए दस दिन का सूतक माना जाता है, उसको 13 दिन फॉलो नहीं करना होता और उसके लिए कोई संस्कार वगैरह नहीं किया जाता। लेकिन हाँ फिर भी कोई विष्णु यज्ञ या विष्णु का पूजा करा लेने से अच्छा माना जाता है, पर ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि आपको करना ही है, बट अगर किया तो अच्छा है, तो बस 10 दिन का सूतक माना जाता है, लेकिन वो भी सिर्फ उसके परिवार को, उसके माता पिता और उसके घर वालों को, और उससे ज्यादा दूर के रिश्तेदारों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं उसको, ऐसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद
प्रभु जी आपका, बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, इतने सारे सेशंस किए हमें और इतना आपने टाइम निकाला प्रभु जी, सुनाया हमें, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका प्रभु जी धन्यवाद करना चाहूंगा। और तो क्या रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में भी प्रभु जी जब भी हमें समय मिले तो और भी डीप में जाके आप बताकार के बारे में प्रभु जी, इसलिए जैसे भी आपको समय मिलेगा। और प्रभु जी भक्तों का ये प्रश्न है कि यदि कोई हमारे डाउट्स हो तो क्या हम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या आपसे पर्सनली बात कर सकते हैं क्या?
देखिए हमने जो ग्रुप बनाया है उसका मूल उद्देश्य यही है कि आप डायरेक्ट उसमें अपना प्रश्न पूछिए और जैसे मेरे पास समय मिलेगा मैं उसका उत्तर तुरंत आप लोगों को दे दूंगा, तो इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है, क्योंकि अगर सब लोग फोन करने लगेंगे तो मैं कहीं और काम में बिजी रहता हूँ तो मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो बेटर है आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दीजिए, और अगर आपको पर्सनली भी बात करना है तो उसी ग्रुप में मेरा नंबर है, आप पर्सनली भी मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बस ये होता है कि मेरे पास और भी काम होते हैं तो वो सारे काम की वजह से कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर निश्चित रूप से मैं आपको उत्तर दूंगा, कहीं पर भी आपको चुकूंगा नहीं। और संस्कार ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि आपको कोई भी प्रश्न है, अगर जनरल प्रश्न है तो आप संस्कार ग्रुप में निश्चित रूप से पूछिए, ताकि और भी भक्तों के अगर मन में कोई प्रश्न आएंगे तो वो निकल जाएंगे। तो बेझिझक जब मन हो जो भी प्रश्न मन में आए आप तुरंत पूछिए, जैसे मेरे पास समय रहेगा मैं तुरंत उस पर रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।
धन्यवाद। इसके साथ साथ प्रभु जी मैं कुछ भक्तों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत समय से जुड़ रहे हैं, अगर मैं किसी का नाम लेना भूलूं तो क्षमा करिएगा। आशीर्वाद प्रभु, पीयूष प्रभु, मंगेश प्रभु, नैना माता जी, नील राघव प्रभु, राधा अनुगा माता जी, सचिन प्रभु, संदीप प्रभु, संजय प्रभु जी, सपना माता जी, शांति मैन मह प्रभु, हिमांशु प्रभु, सूरज प्रभु, वेणी माधव प्रभु, विद्वान गुरान प्रभु, प्रचेता कृपा प्रभु, अनुराग प्रभु और अभय हरि प्रभु, प्रभु जी जो आपके फ्रेंड है अभय हरि प्रभु, और प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे सबसे मूल्यवान धन्यवाद प्रभु जी आपका कि आपने इतना समय दिया और आपने इतना समय निकाला और इसी के साथ प्रभु जी हम आज का स्तर एंड करेंगे और भविष्य में कि प्रभु जी हम प्रयास करेंगे कि आप हमें और भी अपना संग दे सकें। तो अभी भक्तों का मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो हमारे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna.